السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، قرآن پاک میں ایک آیت ہے، ذکر فَإِنَّ الذِّكْرَ کیا ہے؟ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرو، تذکیر کرو، میں آپ کو سکھاؤں آپ مجھے سکھائیں، میں آپ کو بتاؤں آپ مجھے بتائیں. میرا اللہ کہتا ہے یہ عمل مومنوں کو نفع دیتا ہے. میرا اللہ کہے نفع ہو اور ہم کہیں نفع نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ میرا اللہ کہتے ہیں کہ نفع ہو اور ہم کہیں نفع نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے. جس چیز کو میرے رب نے نفع مند بتایا ہے وہ نفع سے خالی کبھی ہو نہیں سکتا. اس میں نفع ہی نفع ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. آپ مجھے سکھائیں میں آپ کو سکھاؤں، آپ مجھے بتائیں میں آپ کو بتاؤں. خیر وہ نعمت ہے جو یاد رکھیے گا بکھری ہوئی ہے، قدم قدم پہ ملے گی. میں استنبول کے ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا، میرے ساتھ تین احباب اور تھے. میں نے انہیں ایک بتایا کہ آج مجھے اس لفظ کی سمجھ آئی ہے، کن فی دنیا غریبن. فلائٹ کا انتظار تھا، کیا دنیا میں ایسے رہے کہ جیسے مسافر؟ میں نے کہا اب دیکھیں یہ سارے مسافر بیٹھے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، یہ مالدار ہے، یہ دکھیارا ہے، یہ غم کا مارا ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ فقیر ہے، کسی کو کوئی مسافر کا پتا نہیں ہے. کن فی دنیا غریبن، دنیا میں ایسے رہ جیسے مسافر ہے، کوئی تجھے پہچان نہ سکے. کوئی کہے دکاندار ہے، کوئی کہے ایماندار ہے، کوئی کہے ایک نمبر ہے، کوئی کہے دو نمبر ہے، تیرے اندر کی جھانک کوئی جھانک نہ سکے. میں نے کہا اس چیز کی بات مجھے اب سمجھ آئی ہے، یہ جتنے مسافر بیٹھے ہیں، یہ سمجھ آئی ہے. اور ایک چیز اور سمجھ آئی وہاں جا کے، ایک چیز اور، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دعا کیا کرو اللہ سے، اللہ کبھی انقلاب کا منہ نہ دکھائے. انقلاب 1947 کا انقلاب تھا، بے گھر ہو گئے، تن بچا کے سب کچھ چھوڑ کے نکلے، اس دل سے کیا گزری ہوگی. اور وہ لوگ جن کے سامنے ٹاور کھڑے ہیں، ان کے گھر سامنے کھڑے ہیں لیکن اس قابل نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، عمارتیں رہنے کے قابل نہیں، یا عمارتیں ساری نیچے بیٹھ گئی ہیں اور وہ سامنے خیموں میں بیٹھے ہیں، کسی کا کچھ نہیں بچا، کسی کا کچھ بچا، کسی کے کچھ جسم بچ گئے، کسی کے کچھ جسم ختم ہو گئے. ایک منٹ کے اندر. ہمارے ایک سمجھدار دوست تھے، وہ کہتے تھے گورنمنٹ منٹ لگاتی ہے. گورنمنٹ سے مراد منٹ، اللہ نے منٹ لگایا اور سوا منٹ کے اندر سب ختم ہو گیا. میں نے یاد ہے آپ کو درس میں ایک دفعہ ایک بات بتائی تھی، مجھے حج پہ ایک صاحب نے ایک بات بتائی تھی کہ وہ دعا کرتا تھا ہر درس میں، اللہ مجبور نہ کرنا، اللہ مجبور نہ کرنا. ہائے وہ بے بس اور مجبور تھے، ان کی گاڑیاں، میں نے ایک جگہ گاڑیوں کا دیکھا، انہوں نے گورنمنٹ نے दबी हुई पिचकी हुई गाड़ियों की लाइनें लगाई हुई हैं, इकट्ठी हो रही हैं गाड़ियां। वो गाड़ियों वाले, वो घरों वाले फिर कहा कि इनके अंदर, इनकी खवातीन में सोने का बहुत शौक है और मलबे के अंदर से वो सोना, वो घर, हर चीज खत्म हो गई और वो मजबूर और बेबस खेमों में बैठे हुए हैं। और बाजू के पास खेमा भी नहीं था, ये पुरानी चादरें, पुरानी शीटें उठा के उन्होंने उठा के उसका खेमा बनाया हुआ था, कोई मुस्तकिल खेमे नहीं थे। मैंने बाज जगह ऐसी जगहों पे गया हूं, जिंदगी का कदम कदम सीखना है। तनफाल मोमिनीन, मेरा अल्लाह कहते हैं एक दूसरे से सीखना मोमनों को नफा देता है, मोमनों को फायदा होता है। आप मुझे बताएं कि आपने किस अमल, किस टोटके, किस वजीफे, किस तस्बी से क्या पाया, मैं आपको बताऊं। अभी इस्तांबुल में मैंने मुलाकात रखी, लोग मिलने आए, एक फैमिली कहने लगी मेरा शोहर दुनिया का आखिरी नशा करता था, मैंने आपके दर्स में सुना, एक दफा सुबह एक दफा शाम सूरत मुजम्मिल पढ़ के मैं इसकी रूह को हदिया करती रही। वो हंस रहा था बैठा, खुद बोला अभी भी 200 ग्राम पड़ा हुआ है मेरी तराज में, 200 ग्राम पड़ा हुआ है, नफरत है, आखिरी दर्जे की नफरत है। सुबह और शाम एक बार सूरत मुजम्मिल, सुबह भी एक बार, बीवी कहने लगी शाम भी एक बार, मैं पढ़ पढ़ के अपने शोहर को हदिया करती रही। ये एक दूसरे को नफा मिल रहा है। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या नफा मिला, उन्होंने बताया मुझे ये नफा मिला, उन्होंने मुझे बताया ये नफा मिला। एक दूसरे के साथ नफा शेयर करें, बताएं। अच्छा, ये वो राज हैं अक्सर, जो अक्सर सीनों में दफन हो जाते हैं या दफन होके कफन का हिस्सा बन के चले जाते हैं। कोई दम है, किसी के पास कोई अमल है, किसी के पास कोई नक्श है, किसी के पास कोई टोटका है, किसी के पास कोई चीज है, ये सारी चीजें ऐसी हैं, दफन हो जाती हैं। मैं कहता हूं नहीं, मेरा अल्लाह कहता है कि एक दूसरे को बताओ और एक दूसरे के बताने से नफा होगा। मेरे अल्लाह ने जिस अमल को नफा बताया है वो नफा है और 100% होगा, वो नफा है और 100% वो नफा होगा। ये जो छोटी इलायची और मेथी दाने का टोटका मैं बताता रहता हूं, सब्ज छोटी इलायची हो छिलका समेत कूटना है और मेथी दाना, मेथे जो अचार में डालते हैं, हम वजन ले लें, बारीक पीस लें, एक चम्मच आधा चम्मच सुबह शाम, कितनी बेशुमार बीमारियों के लिए। लेकिन इसका एक टोटका और है, अगर इसी एक चम्मच को एक कप पानी में भिगो दें, एक कप पानी में भिगो दें, इसी एक चम्मच को एक कप पानी में भिगो दें सुबह और शाम, पानी भी दवाई भी खा लें और शाम को भिगो दें सुबह खा लें, इसकी तासीर बदल जाती है, इसका कमाल बदल जाता है, इसका फायदा बदल जाता है, इसका नफा बदल जाता है। और बाज तबीयतों में अगर कोई दवाई वो मुआफिक नहीं आती, इससे 100% मुआफिक हो जाती है। इसके मिसाल सुनाता हूं, गुड़ खाएं तासीर और है, गुड़ का शरबत पिए तासीर और है, वही गुड़ खाएं तासीर और है, उसी गुड़ का शरबत बना लें, उसका फायदा और तासीर और नफा बदल जाता है। अगर किसी को मेरी जात से नफा मिल जाए, उसका घर बच जाए, उसका जिस्म बच जाए, उसका दर्द खत्म हो जाए, उसकी आहें, उसके आंसू, اس کے مسائل، اس کی مشکلات، اس کی پریشانیوں، میری ذات سے اگر کسی کو نفع مل جائے، اللہ نے بنایا اس لیے ہے کہ میری ذات سے کسی کو نفع ملے. اللہ نے ہمیں پیدا اسی کام کے لیے کیا ہے. اگر میری ذات سے کسی کو نفع نہیں مل رہا، انسان تو ہوں آخری اعلی درجے کا انسان نہیں ہوں، اور اگر میری ذات سے کسی کو نقصان مل رہا پھر انسان نہیں ہوں، میں بچھو یا سانپ ہوں. کیونکہ بچھو اور سانپ کاٹتا ہے پر اس کو مزہ نہیں آتا، کیونکہ اس کی فطرت میں کاٹنا ہے، فطرت میں کاٹنا ہے، مزہ نہیں آتا پر وہ کاٹتا ہے. میری ذات سے کسی کو نفع مل جائے، میری ذات سے کسی کو فائدہ ہو جائے، دن رات یہ سوچیں بس کہاں نفع ملے گا، کہاں فائدہ ملے گا، کہاں خیر ملے گی. میں خیر کا پھیلانے والا، میں خیر کا پھیلانے والا، میں خیر کا سمیٹنے والا، یا میں خیر کا چھوڑنے والا ہوں. ایک وہ ہے جو خیر کو چھپانے والا ہے، اس کے ذریعے سے خیر چھپ رہی ہے، وہ چھپا چھپا کے رکھتا ہے، چوہے کا مزاج ہے یہ، مال اور دولت کو چھپاتا ہے. چوہا ہمیشہ کاغذ ساتھ پڑا ہوگا، اس کو نہیں کاٹے گا، نوٹ کو کاٹے گا، چوہے کو اتنی پہچان ہے. اور اگر سکہ ہے تو اس کو چرا کے لے جائے گا اپنے بل میں. چوہا کبھی کاغذ کو نہیں کاٹے گا، اگر کاغذ ساتھ پڑا ہے، نوٹ پڑا ہے، نوٹ کو کاٹے گا. کیا میری طبیعت میں، کیا میرے مزاج میں خیر ہے یا شر ہے؟ کیا میں خیر کا پھیلانے والا ہوں؟ ہر بندہ اپنے ذات سے سوال کرے، میں بھی سوال کروں. کیا میری ذات سے مخلوق کو نفع ہو رہا؟ ہر بندہ خود سوال کرے. میری ذات سے کسی کی مشکل دور ہو جائے، کسی کا مسئلہ حل ہو جائے، کسی کی بیٹی کا گھر بس جائے، کسی کے بیٹے کا نصیب کھل جائے، مقدر کھل جائے، کسی کا قرضہ اتر جائے، کوئی غموں اور دکھوں کے بہت بڑے جال سے نکل جائے. ایک دوسرے کو بتائیں اور اس پیغام کو پھیلائیں، ایک دوسرے کو بتائیں اور اس پیغام کو پھیلائیں. جب ایک دوسرے کو بتائیں گے اور اس پیغام کو پھیلائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی قیمت ہوگی. میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، لکڑی کی ہے، ایک ایک دانے پہ محنت ہوئی ہے، تسبیح بن گئی ہے، اس کی قیمت ہے. جبکہ یہ عام لکڑی ہے، یہ میرے پاس مد ہے، نبوی برتن، میرے آقا اسی ایسے برتن تھا، ناپ تول میں بھی، استعمال میں بھی. عام تانبا ہے، کاپر ہے، محنت ہوئی ہے، ایک برتن کی شکل بنی ہے. اس میں پانی پینا بھی برکت ہے، اس کو رکھنا بھی برکت ہے، اس کو دیکھنا بھی برکت ہے، کیونکہ میرے آقا نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ میرے مد اور سا میں برکت عطا فرما. اس برتن کے ساتھ میری آقا کی دعا ہے. لوہے پہ محنت ہے، جہاز بن گیا، لکڑی پہ محنت ہے، فرنیچر بن گیا. جب کوئی چیز، جب جس چیز کو اہمیت دینی ہو اور اس کو بہت زیادہ قابل قبول بنانا ہو، اس پہ تھوڑی سی محنت کر دو. جو مجھے ملا ہے میں اس پہ محنت کروں اور اللہ کی مخلوق کو بتاؤں، اللہ کی مخلوق تک پیغام پہنچاؤں، پیغام پہنچاؤں. اللہ کے ہاں یہ پیغام، یہ عمل بہت پسندیدہ ہے، بہت پسندیدہ، بہت پسندیدہ. اللہ کے ہاں یہ پیغام، عمل بہت پسندیدہ. لوگوں کو ذات کی طرف تسبیح خانے نے متوجہ نہیں کیا، اللہ کی طرف متوجہ کیا. اس لیے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں آپ کے گھر روحانی چکر لگاؤں گا، آپ کے گھر کی صفائی کروں گا، میں نے موکلات کی فوج بھیج دی ہے، میں نے جنات آپ کے جلا دی ہیں، میں نے یہ بھیج دیا ہے، آپ کے گھر میں موکل آئیں گے، یہ میرے فلاں وقت میں آئیں گے، یہ کر دیں گے، لوگ حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تسبیح خانے کے ممبر تو یہ پیغام نہیں دیتا، یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، انوکھی باتیں کر رہا ہے. وہ بھی مجبور ہے بےچارا، بچپن سے اس کو شوق ہے ایسی باتیں سننے اور کرنے کا، وہ بے بس ہے، مجبور ہے. ہمیں اسی کو بتائیں کہ مجھے یہ نفع ملا ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ اللہ اکبر، ابھی سفر میں نا ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، اس کو بات رکھنا آتا ہے. دیکھیں کیا آپ یہ بات میری اس بات کی تائید کریں گے کہ تسبیح خانے سے جڑنے کے بعد بندے کو اتنے واقعات لوگوں کے اور اپنے ملتے ہیں کہ کوئی ایک جھوٹ بھی نہ بولے تو اتنے واقعات ہیں، ضروری نہیں کہ جھوٹ بولے. کیوں جھوٹ بولے؟ اتنے واقعات اور مشاہدات ملتے ہیں کہ فلاں ٹوٹکے سے یہ فائدہ پایا، فلاں عمل سے یہ فائدہ پایا، فلاں نسخے سے، فلاں وظیفے سے، فلاں آیت سے، فلاں اسم سے. کیا خیال ہے؟ اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ میرے خیال میں کوئی جھوٹ نہیں. بندہ بولنے بیٹھے اپنے اور سنے ہوئے تجربے اگر بتانا شروع کر دے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں دین کی ایک کتاب بھی نہیں پڑھا ہوا، لیکن میں 3 گھنٹے بول سکتا ہوں، تسبیح خانے کے پیغام کو اتنا سنا اور اتنا بولا، میں 3 گھنٹے بول سکتا ہوں. اور واقعی وہ بولتا ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں اور موبائل پہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ پیغام وہ ہے، یہ وہ پیغام ہے جس نے پردے ہٹائے. اب تک یہ چیزیں پردوں میں تھیں، بہت کم لوگ تھے جو بتاتے تھے. میں نہیں کہتا کہ صرف اپکری ہی بتا رہا، اپکری کا پلیٹ فارم ہی بتا رہا، بہت کم، عمومی نہیں. پیر صاحب اپنا وظیفہ خلیفہ کو دے گئے، اپنے بیٹے کو دے گئے دم. انہیں کہ جی پیر صاحب نے اپنا یہ دم ہے، اب پیر صاحب پردہ کر گئے ہیں، اب ان کا بیٹا وہ دم کرتا ہے، یا وہ تعویذ دیتا ہے، یا وہ عمل کرتا ہے، یا وہ چیز جو بھی ہے. حکیم صاحب اپنا نسخہ، معالج اپنا فارمولا اپنے بیٹے کو دے گیا یا اپنی کتاب میں لکھ گیا. ابکری نے بھی ابھی 100% نہیں کیا، ابھی یہ 100% کی طرف پہلا قدم ہے. کہاں کہتے ابکری، کون سا دعویٰ کرتے کہ ہم نے 100% کر دیا؟ اگر میں یہ دعویٰ کر دوں تو شاید میرا دعویٰ کمزور ہوگا. ابکری نے بھی 100% نہیں کیا. ایک 100% کرنے کی طرف قدم ہے جو اٹھ رہا ہے کہ مخلوق کو خیر کیسے ملے، فیض کیسے ملے، مشکلات کیسے دور ہوں، ناکامیاں کیسے حل ہوں، الجھنے کیسے ختم ہوں. ایک قدم ہے جو اٹھا ہے، اور لوگ ٹوٹ پڑے ہیں. سچی بات ہے. کیوں؟ مخلوق دکھی ہے، مخلوق پریشان ہے، مخلوق دکھی ہے، مخلوق پریشان ہے. مسائل سن 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 کے ذہنی مریض بن گئے. موجودہ ریسرچ نے ایک بات بتائی ہے، اور ان میں پاکستان کا ملک بھی شامل ہے، کہ اتنے زیادہ مسائل سنے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان، ٹریفک حادثات کی وجہ یہ ہے، سوچ کہاں رہا ہوتا ہے، دیکھ کہاں رہا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوتا ہوں، وہ بائک پہ ہے یا گاڑی پہ ہے یا جہاں بھی ہے، اسے علم نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں. मैंने इशारा देना है, मैंने मोड़ काटना है, मैंने एकदम क्या करना है उसे पता नहीं। ट्रैफिक हादसात के वजूहात में एक बड़ी वजह यही है कि मसाइल इतने सुने, इतने बोले, इतने पढ़े, इतने देखे, इतना। मेरे पास एक साहब आए, 40 साल से सब्जी की दुकान है, 40 साल से। मुझसे कहने लगे कि मेरा कारोबार बहुत ज्यादा नीचे चला गया, काम उसकी दुकान शहर की उन दुकानों में से है जहां सुबह सुबह, क्योंकि सब्जी का काम सुबह सुबह होता है, सुबह सुबह पाक नापाक लोग सारे जमा होते हैं और मुआशरे के मसाइल, बादशाहों को गालियां, सियासत और सियासतदानों पे एतराज और तनकीद, ये मौजू होता है, ये मौजू होता है। वो साहब मेरे पास यहां लाहौर में आए, 2 दिन मेरे साथ रहे, थोड़ी देर के बाद ना फिर मसाइल करना शुरू कर दे। मुझे कहें इस मोदी का भी कोई हल है, मैं कहूं हाँ बेहतरीन हल है। थोड़ी देर के बाद फिर ये कहें ये अमेरिका के सदर का भी कोई हल है, मैं कहूं हाँ बड़ा बड़ा हल है हमारे पास तो। यानी मुझे पाकिस्तानी सियासतदानों के नाम लेके दें, वो इतना खा गया, वो इतना कर गया। मैं कहूं 40 साल तारिक, तू 2 दिन के अंदर इसको इंजेक्शन लाख लगा, वो एक 40 साल के इंजेक्शन है, ड्रिपें लगी हुई है, 40 साल ड्रिपें लग 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 के बदन सारे जहां से बाखबर, अपने जहां से बेखबर। सारे जहान की खबरें हैं, सारे जहान की खबरें हैं और अपने जहान की कोई खबर नहीं, सारे जहान की खबर। दो दिन के बाद कहने लगा बस मैं क्या करूं, मैं बेबस हो जाता हूं, मुझे पता है कि आपका ये मौजू नहीं है, आपका मौजू और है। मैं क्या पता है मेरा मौजू क्या है क्या? मैंने कहा जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर, ये मेरा मौजू है, जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर, और ये मौजू मेरा है। और जमीन के दरमियान जिसको लफ्ज कहते हैं हालात हाजरा, ये तो सबका मौजू है, हालात ये तो सबका मौजू है। अच्छा इतना ज्यादा बयान किया, मसाइल उलझते गए या सुलझते गए? उलझते गए। अच्छा बादशाहों के बस में नहीं है, वो भी हमारी तरह बेबस है। कौन बादशाह कहेगा महंगाई हो, कौन कहेगा पेट्रोल महंगा हो, कौन कहेगा डॉलर ऊपर जाए? नहीं कहेगा, बादशाह कभी नहीं कहेगा। उसे पता है कि महंगाई होगी तो मुआशरा मुझसे खफा होगा, उसके बस में नहीं है, हमारे बादशाहों के बस में नहीं। ये वो फैसले हैं जो ऊपर से आते हैं। इसलिए मेरा मौजू जमीन के नीचे, कबर आखरत। जमीन के नीचे का निजाम ठीक होगी तो फसलें ठीक होगी, अल्लाह जमीन को सोना बनाएगा, सोना उगलेंगी, हमारे खर्चे, हमारा निजाम, हमारी ज़रात और हमारी आखरत, हमारी कब्र, ये जमीन के नीचे का निजाम है, सारा जमीन के नीचे का निजाम है। और आसमान के ऊपर का निजाम क्या है कि ऊपर से अजाब भी, आफात भी, बलाएं भी, जलजलों के फैसले भी और महंगाइयों के फैसले ऊपर से हो रहे हैं, और जमीन के नीचे, जमीन तो अब ठहर जा अल्लाह के हुक्म से, अब मजीद जलजले हमें ना दे। हमारा ये मौजू है, जमीन से, जमीन के नीचे, आसमान के ऊपर, और जमीन और आसमान के दरमियान हालात हाजरा। वो बादशाह आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वो निजाम चलता रहेगा। एक सियासतदान मेरे पास आए बैठे थे पुराने, कहने लगे आपका मौजू भी अजीब है, हम सारी उम्र महंगाई को रोते रहे, महंगाई तो और हो गई। कहने लगा मुझे याद है कि सोना 6,000 रुपए तोला था, फिर 6,500 तोला हो गया और अब तकरीबन 2,00,000 रुपए तोला है। कहने लगे हमने तो सारी उम्र ये कहा महंगाई हो रही, तो हमारे कहने से रुक कहां गई, वो तो अल्लाह को राजी करेंगे, अर्शी निजाम हमारे हक में बदलेगा, अल्लाह की नजर बदलेगी, अल्लाह के फैसले बदलेंगे, जब नजर बदलेगी, जब फैसले बदलेंगे, फिर क्या होगा, सहाबा कराम के दौर में गंदम का दाना खजूर की गुठली के बराबर। अब बोलो, गंदम का दाना किसके बराबर? खजूर की गुठली के बराबर। बरकतों का दौर था, खैरुल कुरूने करनी, ये बरकतों का दौर, सुम्मल लदीना यलूनहुम, बरकतों का दौर, सुम्मल लदीना यलूनहुम, बस सहाबा का दौर, ताबईन और तबा ताबईन का दौर, ये बरकतों का दौर था कि खजूर की गुठली के बराबर गंदम का दाना, और एक बर्तन है सारे खा रहे हैं, और एक मशकीजा है सारे पी रहे हैं, लश्कर के लश्कर, और उसमें से पानी खत्म नहीं हो रहा। और एक वक्त पर यह आया, एक गुर्बत का दौर आया, जब इजाजा रसूलुल्लाह वल्फत हो, और जब अल्लाह पाक ने अपनी मदद के फैसले किए, फिर मदीना की गलियों में लोग माल लेके आवाज देते थे, हमारे पास माल है, कोई लेने वाला है? कोई लेने वाला नहीं था, कोई लेने वाला नहीं था, कोई लेने वाला नहीं। सारे जहां से बाखबर मैं बैठा हुआ था वहां अराफात में, हर बंदा अराफात में तस्बीह नहीं मोबाइल लेके बैठा हुआ था, और टिकटॉक और पता नहीं क्या, और ये कर रहा था। मेरे साथ एक बैठा हुआ था पुराना गाग सियासतदान, मुझे कहता निधि फरोले, कोई लभत नहीं, इसका तर्जमा करता हूं, आपको तो समझ आई, पूरी दुनिया सुन रही है, फरोल यानी वो क्या कहूं, फरोल को लफ्ज क्या हूं, रिसर्च ना कहो, और बार निरी तलाश है, तलाश कह दू, और लब्बत यानी रिजल्ट जीरो, निरी फरोल है, वो गंद को फरोलते हैं ना, ऐसे करते हैं, चीजें निचात करते हैं, और लब्बत यानी रिजल्ट कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये तस्वीर खाने ने एक सीखने सिखाने का निजाम दिया है, और मैं कह रहा हूं 100% नहीं है, अभी मैंने 1% से शुरू किया है, और 1% से इतना फायदा हो गया लोगों को, और लाखों करोड़ों लोग हैं जो तस्वीर खाने की निस्बतों के साथ नफा पा रहे हैं और जुड़े हुए हैं और फायदा पा रहे हैं। और अगर यह पैगाम 1% अभी मैंने काम शुरू किया है, अभी 99% रहता है, अगर यह 1% से 100% हो जाए, अल्लाह के फैसले बदल जाएंगे, अल्लाह की नजर बदल जाएगी। नजर से मुराद बच्चा ना, मां की नजर ऐसे देखता है, छोटा सा बच्चा है, मां की नजर पहचान जाता है, शफकत है या गजब है या गुस्सा है। हाँ, अल्लाह की नजर में इस वक्त गुस्सा है, गुस्सा है, जलाल है, जमाल नहीं है। कौन सी चीज ऐसी है जो अल्लाह के गुस्से को ठंडा करती है? बस उसको तलाश करें, कौन सी चीज ऐसी है जो अल्लाह के गुस्से को ठंडा करती है, कौन सा अमल ऐसा है जो अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है? बोलें आप बताएं। एक सदका है जो अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है हदीस के मुताबिक, कौन सा अमल और है बताएं? इस्तिग़फ़ार दूसरा अमल, गिनते जाएंगे। अल्लाह के गुस्से को ठंडा करना है, नाराज है, हाय मैं कह रहा हूं, मैं सोता हूं, मैं जागता हूं, शहर के शहर ऐसे ऐसे मिलिया मेट हो गए, मेरी आंखों से वो नक्शे नहीं जा रहे, क्या करूं मैं, मेरी आंखों से वो नक्शे नहीं जा रहे, मैं बैठा बैठा ऐसे उदास होता हूं, मैं उदास हूं, मुसलसल उदास हूं, सच पूछ। ताहद नजर
एक बिल्डिंग भी नहीं बची, या गिर गई है या टुकड़े टुकड़े होकर खड़ी हुई है, और उसको पानी का प्रेशर फेंक रहे हैं और क्रेनें उसको गिरा रही हैं नीचे, और टेम्पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, उसमें मलबा उठा 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 उठा, और कब्रिस्तानों की लाइनें हैं, दूर तक कब्रों की कब्रें हैं, इज्तिमाई कब्रें हैं, कहीं 100 बंदा, कहीं 200 बंदा, कहीं 10 बंदा, कहीं 2 बंदे, कहीं 1 बंदा, कहीं कितने बंदे। नक्शा नहीं जा रहा मेरी अंदर से, और उस कौम की खुददारी नहीं जा रही मेरे मिजाज में, उस कौम की खुददारी और उस कौम का हया और गैरत और उस कौम के मिजाज के अंदर झपटना और टूट पड़ना, ना 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 ना, मेरे अंदर ये नहीं जा रही बातें जो मैं आंखों से देख के आया हूं। मैं क्या क्या बताऊं और कैसे नक्शे बताऊं। सुबह बैठा हुआ था तो जलजला आया, थोड़ा सा ज्यादा आ जाता था मैं भी उसमें रगड़ा जाता, वो थोड़ा ही आया था, बस बिल्डिंग हिली थी ऐसी थोड़ी देर के लिए। अल्लाह का अमर था कि इतना है, अमर ज्यादा आ जाता तो वो सारा कुछ खत्म हो जाता। फजर की अजानें हो रही थी, अभी तो ये हमारे पैगाम की इब्तदा है, हम कौन सा कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया फतह कर ली। मुझे बेशुमार लोगों ने बताया कि हम फलां मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे, फलां को बुरा भला कहते थे, सारा दिन हमारा मौजू क्या था, हमारे मिजाजों में रवादारी, मोहब्बत, उल्फत, प्यार, बर्दाश्त और पता नहीं क्या कुछ, बेशुमार लोगों ने बताया। नक्शे बदले, जहन बदले, जज्बे बदले, अंदाज बदले, घरों के घरों और फैमिलियों की फैमिली, खानदानों के खानदान के, तस्बीखाने का थोड़ा सा भी पैगाम फैला है, 1%, अगर 100 में से है तो 1%, सिर्फ 1%, 1%। तो क्या ख्याल है, ये पैगाम फैलना चाहिए, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करना है तो अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने की पहली चीज सदका, दूसरी इस्तिग़फार, दूसरी हदीस के मुताबिक बताएं कि कौन सी चीज ऐसी है जो अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर, तीसरी चीज कौन सी है। हाँ जी, सिला रहमी और मखलूक को खाना खिलाना, अल्लाह की मखलूक को खिलाना, सलाम करना, सिला रहमी, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़, पहली चीज। दूसरी, जो तुझे महरूम करे तो उसे अता कर, दूसरी चीज। तीसरी चीज, जो तुझ पे जुल्म करे उसे माफ कर, सिला रहमी। मैं भी अभी पूरा नहीं आया, कहां आया हूं, सीख रहे हैं। ये चीजें वो हैं जो अल्लाह के गुस्से को ठंडा करती है। और कौन सी चीज अल्लाह के गुस्से को ठंडा करती है? आंसू। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस तेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, कहने लगा मेरे पास एक मांगने वाला आता था, साइल मांगने वाला आता था। कुछ अरसे के बाद कहने लगा मेरे पास उसने पैसे रखवाना शुरू कर दिए, उसे मुझ पे एतबार हुआ, फिर पैसे रखवा के जाता था, सारा दिन मांगता था। आवाज आ रही है? अरे क्योंकि मैं ये आवाज आ रही इसलिए कहता हूं कि स्पीकर वालों को जगाता हूं, स्पीकर वाले कुछ थोड़ा सा सो जाते हैं, थके मारे होते हैं बेचारे, कुट्टे मारे। तो अब देखें है ना, अभी मैं देखें बोलूंगा आवाज आपको बिल्कुल खनक खनकी हुई आवाज आएगी। तो कुछ अरसे के बाद उसने पैसे रखे, आई ना आवाज, ये देखो हमारे स्पीकर वाले वैसे थोड़ा सा सो जाते हैं, क्योंकि वो स्पीकर के कमरे में ना मुसलसल एसी चलता है, बहुत मशीनें लगी हुई हैं, लंबा चौड़ा निजाम है। तो फिर जो भी प्यू माता पिटिया होते मर दे कोटेज मर दे उसी कमरे में जाता है। क्यों आए हो भाई? उन्हें कह मैं खिदमत तार जोड़ने के लिए आया हूं, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। पैसे रखने शुरू कर दिए उसने और सारा दिन वो साइल मांगता था, फिर इनके पास पैसे रखता था। इसलिए मैं कहा करता हूं जरूरतमंदों को तलाश करें, असली जरूरतमंदों को तलाश करें, असली जरूरतमंदों को तलाश करें। अल्लाह, उसका माल बहुत ज्यादा हो गया, ले जाता था तो कुछ अरसा हुआ नहीं आया, तो इसे तश्वीश हुई कहां गया। पूछते पूछाते गया तो एक पुराना खंडर था, उस तक पहुंचा तो बीमार पड़ा था। इसने आवाज दी, पहचान गया, कहने लगा मेरा आखिरी वक्त है, इस जगह मेरी दौलत दफन है सारी, मेरे साथ वादा कर, ये मेरा सारी दौलत, ये जो चांदी की सोने की अशरफियां हैं, ये सारी मेरे साथ दफन करेगा, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। मैं सारी उम्र फक्र फाका गुर्बत तंग दस्ती इसमें से खर्च कभी नहीं किया, क्योंकि ये कुदरत का निजाम है, जो मांगता है अल्लाह पाक उसकी जात के नफे से उसको महरूम कर देता है। एक और मौजू है जो सवाल के दरवाजे खोलता है, किसके दरवाजे? सवाल के दरवाजे खोलता है, अल्लाह उसको महरूम कर देता। इसने कहा मैं वादा करता हूं कि आपका माल आपके साथ रखूंगा, वादा कर लिया। मर गया वो, तजहीज और तकफीन की, उसके पैसों से कफन भी नहीं दिया, और चुपके से उसके माल का जो माल जिन्हें अशरफियां थी वो सारी उसके इस कब्र में रख दी। तिलकल अय्याम नुदाखिल हुआ बैन अन्नास, सूरज साए ढलते रहते हैं, इस पे हाल आ गया और गुर्बत आ गई, और गुर्बत भी ऐसी आई कि लुकमे का मोहताज, जाग रहे हैं मोहताज, अगर कोई ऐसे बैठे तो हट जाए ऐसे, तो इससे नींद आती है। एकदम गुर्बत की इंतहा में पहुंच के ख्याल आया, वो जो फकीर था उसकी दौलत मैंने रखी थी, उसके किस काम की, निकाल के लाऊं खर्च करूं। रात को चुपके से कुदाले वगैरह लेके गया, कब्र खोली तो देखा तो उसकी हड्डियां पड़ी थी, और वो सारे पैसे जितने भी थे उसकी सारे जिस्म की हड्डियों के साथ ऐसे लगे हुए थे, और उस और हर पैसा लाल था। इसे जस्तुजू हुई कि लाल क्या, इसने हाथ डाला ना उस अशरफी पे, वो अंगारा था, इसकी चीख निकली। इसने वहीं सब कुछ छोड़ा और कब्र को बंद किया, और कहीं से पानी आया तो पानी में हाथ डाला तो कोई सुकून मिला। शाह अब्दुल अदीस मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया कि हजरत दुनिया फिर चुका हूं, इसका कोई इलाज है? दुनिया फिर चुका हूं, इसका कोई इलाज है? फरमाया जहन्नम की आग को सिर्फ आंसू बुझा सकते हैं, और जहन्नम की आग असल में अल्लाह के गुस्से का नाम है, उसको सिर्फ आंसू बुझा सकते हैं। रो,
اللہ کے خوف میں، اللہ کے شوق میں رو، اور وہ جو آنسو گرے نا ان ہاتھوں پہ لگا، اور دن اور رات پانی میں ہاتھ ڈالتا تھا، رات کے کسی پہر میں اگر اس کی آنکھ لگ جاتی تھی اور پانی سے ہاتھ نکلتا تھا تو جلن سے اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور ہائے ہائے ہوتی تھی. فرمایا کہ جہنم کی آگ کو صرف کیا چیز بجھا سکتی؟ بولیں، پھر بولیں، آنسو بجھا سکتا ہے. رو اور یہ آنسو لگا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضور، میرا زخم، میری جلن، میری آگ ٹھیک ہو گئی اور میری تکلیف ٹھیک ہو گئی. تو اللہ کے غصے کو اگلی چیز کون سی بجھاتی ہے؟ آنسو. اور اللہ کے غصے کو جو چیز اگلی بجھاتی ہے وہ توبہ. اور اللہ کے غصے کو جو چیز بجھاتی ہے، اللہ کے غصے کو جو چیز ٹھنڈا کرتی ہے وہ استغفار. اور اللہ کے غصے کو جو چیز ٹھنڈا کرتی ہے وہ صلہ رحمی ہے. ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن. قبرستان میں نا اماں ابا کے مزارات کے ساتھ دنیا بہت آتی ہے، وہاں ہدیہ دیتی ہے اعمال کا. میں نے ایک برامدہ بنوا دیا، جگہ ویران پڑی تھی، گڑھا تھا وہاں، لوگوں نے نا قبر لپائی کرنے کے لیے وہاں سے مٹیاں اٹھاتے 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 وہاں بہت بڑا گڑھا بنا ہوا تھا، تو اس پہ بہت خرچہ ہوا. میرے کچھ رشتے دار ہیں، بہت مالدار ہیں، وہ آئے، وہ کہنے یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تدفین کرنے لوگ آتے ہیں، کچھ سایہ نہیں ہوتا، وہ بیٹھ جائیں گے. فاتحہ کے لیے لوگ آتے ہیں، سایہ نہیں ہوتا، سردی گرمی بارش طوفان، وہ بیٹھ جائیں گے. اتنی گالیاں دیں مجھے بھی اور میرے ان بزرگوں کو بھی، مزارات کو بھی بہت برا بلا کہا. مجھے پیغام ملتا رہا، میں خیال کرنا ان سے الجھنا نہیں، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. میں اچانک حویلی میں گیا تو پتہ چلا کہ بھائی صاحب نے بتایا کہ آپ کو کارڈ آیا ہوا ہے انہی کی طرف سے، ان کے رشتہ داروں کی طرف سے. میں فوراً وہیں اسی کھڑے پاؤں چلا گیا. میں جا کے، وہ دونوں بیٹھے تھے، دونوں بھائی تھے، اور جی بھر کے گالیاں دیں، برا بھلا کہا. ایک دن نہیں، اچھا پھر کیا کیا؟ ارد گرد کے جتنی قبروں والے تھے ان کو جمع کیا کہ دیکھو یہ بنا رہے ہیں، اور ہر بندہ کہے ہماری قبروں کو کیا ہوتا ہے، یعنی لوگوں سے بھی خود بھی. میں نے کہا بیٹا جا کے ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ملو، بڑوں کو ایسے ملا جاتا ہے. اور میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھا اور میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا. اور پھر اللہ سے باتیں کی، مولا اگر تو میری نیت صاف تھی جس کا میں دعویٰ کر نہیں سکتا، تو مولا پھر مجھے اس صلہ رحمی کے اوپر جو وعدے ہیں وہ عطا کر، وہ دے، اس صلہ رحمی پہ جو وعدے ہیں کہ رشتہ داروں نے تیرے ساتھ جو کیا تو نے ان کے ساتھ کیا کیا. پھر اگلی جگہ ایک اور موت پہ ہم اکٹھے ہوئے، ایک جنازہ تھا، وہاں ان کا ادب احترام کیا. میں نے کہا مولا دے، نیکی کر کے نا اللہ کے پاس ادھار رکھوا دیا کرو، اور گناہ سے بچ کے اللہ کے پاس ادھار رکھوا دیا کرو. رب سچا ہے، اس کے وعدے سچے ہیں. دیکھو آج موضوع ہے کہ اللہ کے غصے کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا. پر بہت سے لوگ میرے سامنے کچھ سو رہے ہیں، ایک وہ صاحب سو رہے ہیں، ایک وہ سو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نہ سوئیں، آج موتی لے لیں. وہ کہتے نہیں ہم سونے آئے ہیں. मैं अपने बेटों को ले गया एक बंदे के पास, बकायदा मिलवाया। मुझे कहने लगे बंदा दिखाए तो सही, जो सोता था और मैं उसको उठाता था, ऐसे उठाता था, दर्श हो रहा होता ना, वो सोता था, बयान होता था, सोता था, उठाता था। वो कहता तारिक छोड़, यही तो सोने का मौका मिलता है, तो सोता रहता है। मैं नाराज भी हो जाता था। मेरे बेटे कहने लगे दिखाओ तो सही। फिर उसको मैं ले गया, मैं ये है, फिर उसको मैंने बिठाया, मैं तुझे मैं उठाता था। हंस पड़ा। शायद बाज लोग आराम के लिए, कैलोले के लिए आते हैं, ज्यादा तकलीफ देना उनको मुनासिब नहीं, लेकिन चूंकि मेरे अंदर जज्बा है, आए हैं तो कुछ झोलियां भर के जाएं। बारिश भी होती रहे तेज और तेज, और बर्तन भी ऊंधा रहे, क्या एक करंट पड़ेगा? बारिश बहुत तेज हो और बर्तन सीधा हो तो भर जाएगा, और बर्तन उल्टा हो तो खाली का खाली रहेगा। अल्लाह के पास ये सिला रहमी का अल्लाह के लिए करके, इसलिए कह रहा हूं वबिज़ुल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबन सबील। ये रमजान आ रहा, अभी से तैयारी करना शुरू कर दे कि मैंने सिला रहमी के कौन से पैकेज देने हैं। अभी से तैयारी करना शुरू कर दे। मैंने अल्लाह से अर्ज किया कि मैंने औला अगर मेरी नीयत ठीक है, जिसका मैं दावा कर नहीं सकता मौत से पहले, तो मौला फिर मुझे इस सिला रहमी का जो वादा तूने और तेरे हबीब ने किया अता फरमा। अल्लाह और उसके हबीब ने जो सिला रहमी पे वादे किए, अल्लाह उसके हबीब ने जो सिला रहमी पे वादे किए, सिला रहमी बुरी मौत से बचाती है। एक, सिला रहमी आफात से बचाती है, बलियात से बचाती है। सिला रहमी से रिस्क इतना बढ़ता है कि बारिश की तरह, और सिला रहमी से उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, और सिला रहमी से सेहत मिलती है, और सिला रहमी से तंदुरुस्ती मिलती है, और सिला रहमी से खैर की झोलियां भरती हैं। आप किसी को पैसे नहीं दे सकते, आप खुद जरूरतमंद हैं। सहजाना भी सिला रहमी है, सहजाना, सहजान, सहजान। और फिर कोई गुनाह का मौका है और उस पर कुदरत है, उससे बच जाना, यह भी अल्लाह के पास उधार रखो, यह भी अल्लाह के पास उधार रखो कि या अल्लाह तू जानता है, तू जानता कि फला मौका बहुत ज्यादा था गुनाह का, महज तेरे खौफ से, महज तेरी नजर से, महज तेरी वजह से अल्लाह मैं बच गया था और दूर हो गया था, मुझे दे अब। हारून रशीद को एक साहब ने कहा तू जहन्नमी है, बादशाह था, खौफ खुदा वाला था कि तू जहन्नमी है, परेशान हो गया, परेशान हो गया, क्या बनेगा? उसके पास किया, उसने कहा जी कहने वाला मोतबर आदमी है, हम उसके बारे में कोई नहीं कह सकते। एक अल्लाह वाले के पास गए तो अल्लाह वाले ने पूछा कोई जिंदगी में ऐसा वाकया हुआ है कि गुनाह का मौका था और गुनाह पे कुदरत थी तो उन्हें महज अल्लाह के लिए छोड़ दिया? वाक्या सुनाया पूरा हारून ने अपने महल का, यह मौका था। फरमाया जा तू जन्नती है। उन्हें कैसे कर, कुरान कहते हैं का वलमन खाफा मकाम और रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह से डर गया उसके लिए जन्नत नहीं दो जन्नतें हैं, जन्नतान, जा तेरे लिए दो जन्नतें हैं। तीन मुसाफिर जा रहे थे, बारिश हुई, तेज हो गई। मैं आपको हदीस सुना रहा हूं, आका का फरमान। एक गार में चले गए, स्लाइडिंग हुई, पत्थर गार के मुंह के आगे आया इतना के बंदा निकल ना सके, बहुत बड़ा पत्थर था।
अब अंजाम यही था कि शीशक तक के मरना, अंजाम यही था, इसके अलावा कोई अंजाम नहीं।
अंजाम यही था शीशक के मरना। आपस में मशवरा किया कि अल्लाह के सामने अपनी कोई नेकी पेश करो और उसके वसीले से पत्थर टलवाओ। एक ने कहा, मौला बूढ़े मां बाप थे, उनकी खिदमत करता था और बहुत करता था। एक रात दूध लेके आया, सो गए, सारी रात खड़ा रहा, वो सो गए। सुबह उठा तो उनकी आंख खुली तो दूध पिलाया। सखिया का, अगर तेरी बारगाह में यह अमल पसंद है तो इस पत्थर को हटा दे। ऐसा कहने की देर थी, पत्थर हट गया कुछ, पर इतना ना हटा कि बंदा निकल सके। मैं कई लोगों को मैंने कहा है, कह रहे हमारा बाप हमें हक नहीं देता जायदाद में, बहनें हक नहीं देती हैं। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते छोड़ दो, मां बाप से बहन भाइयों से जिंदगी में जायदाद के लिए ना लड़ना, ना उलझना, शिकवा भी ना करना। दे दे उनकी मेहरबानी है, जितने दे दे उनका एहसान है, ना दे ठीक है। अल्लाह से अगर गुरबत के चार दिन आएंगे, हालात आएंगे, सबर कर ले, पर जो फिर बरकतों के दरवाजे खुलेंगे ना तेरे लिए और तेरी नस्लों के लिए, फिर ऐश करेंगे। सच है ये, और ये हकीकत है। मेरे पास वाकयात दर वाकयात दर वाकयात हैं इसके, और आपके पास भी होंगे। मैंने कई लोगों को, उन्होंने मेरी मिन्नत मान ली, मां और बेटा दोनों अदालत के पैरे में खड़े होते थे, पेशियां होती थी, इधर मां खड़ी होती थी, इधर बेटा खड़ा होता था, इधर भाई खड़ा होता था, इधर भाई खड़ा होता था, इधर बहन खड़ी होती थी, इधर भाई खड़ा होता था, इधर बाप जायदाद के लिए छोड़ दे। दे दे उनकी मेहरबानी है, जितना दे दे उनकी उनकी शफकत है। अल्लाह अकबर। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे जिंदगी भर मुझे जुरत ना हुई, अम्मा के तो कदमों को मैंने 70,000 दफा बोसा दिया, वालिद की जुरत ना हुई। आखिरी वक्त में मैंने कफन के बंद खुलवाए पांव की तरफ, और अपने वालिद के पांव को बोसा दिया। कि जिंदगी भर फिर ये पांव मुझे कहीं नहीं मिलेंगे। तो उसने सबसे पहले जो नेकी बयान की वो ये बयान की। दूसरे ने कहा, मौला एक मजदूर आया मेरे पास, मजदूरी करता था, गुस्से में आया, छोड़ के चला गया। मैंने जो उसकी मजदूरी बनी थी वो ना ली, उसने उसकी बकरी ली, वो बकरी पलती रही, फिर बकरी के बच्चे हुए, बढ़ती गई, उसका रेवड़ बन गया। एक नवाब अचानक आया मेरे पास, कहा मेरी ये फला मजदूरी थी वो दे। मैंने कहा ये सारी बकरियां तेरी मजदूरी, नहीं मेरी मजदूरी तो वो एक आना थी, उसने मैंने तेरी बकरी ले ली थी, ये सारी तेरी है, ले जाओ। और वो हैरान, बोला अगर तेरी बारगाह में ये नेकी है तो आज फिर पत्थर हटा दे, और पत्थर हट गया। नेकी करके ऐश करो और ऐश करो, हाँ, नेकी करके उसको अल्लाह से कैश कराओ। ये चेक है, बेहतरीन चेक है, और फिर ऐश करो। अब तीसरे ने अपनी फरियाद उस अल्लाह की बारगाह में बयान की, तीसरे ने कि मौला एक गुनाह का मौका था और आखिरी लम्हा था, और महज तेरी वजह से मैं हट गया। अगर तेरी बारगाह में उस गुनाह से हटने की तेरी बारगाह में वो कोई अगर वो अमल है कोई और वो बहुत बड़ा अमल है तो अल्लाह इस पत्थर को हटा दे। एकदम पत्थर ऐसे हटा और गिर गया और रास्ता खुल गया। नेकी करें, नेकी करके अल्लाह के खजानों में जमा करा दें, कि अल्लाह के खजानों में जमा करा दें। ये नेकी है मौला, तेरे खजानों में जमा है। मैं आपको हकीकतन कह रहा हूं, गुनाह का मौका है अल्लाह के लिए बच जाएं, अल्लाह खजानों में जमा करा दें। या अल्लाह ये मेरी मुश्किल और अम्मा बुढ़ी आके अब आप मेरा डॉक्स हो कहिए नहीं समझे बूढ़ी ना पैसे बचा के रखते हैं ना, मेरा दुख सुख है समझ नहीं आए। बूढ़े लोग पैसे बचा चीजें बचा के रखते हैं, अम्मा क्या है अके मेरा दुख सुख है, यानी मैं दुखी सुख के वक्त में मेरा काम आएगा चीजें बचा के रखना, पैसे बचा के रखना, ये मेरा दुख सुख है, ये मेरा दुख सुख यही तो है। कैश करें, कैश करें, नेकी को भी करके और फिर अपने दिल को टटोले। हाय ये दिल एक पल में बदल जाता है, इसकी नीयतें बदल जाती हैं, सच खोट में बदल जाता है, और अगर खोट भी है तो सच में भी बदल जाता है। एक पल में नीयत तो नंबर थी, एक पल में अल्लाह की रजा सामने आई और नीयत एक नंबर हो गई। ये दिल पल में बदल जाता है, ये दिल पल में बदल जाता है। कोई भी किसी के साथ नेकी करे, कोई छोटा सा अमल भी करे ना, उसे अल्लाह के खजानों में रखवा दें कि मौला तुझसे बड़ा अमीन कोई नहीं, अमानतदार कोई नहीं, और तुझसे बड़ा करीम कोई नहीं। ये मेरा अमल है, इसको अपने पास, और जब मुझे मुश्किल होगी मैं तुझसे लूंगा। अब देखें, बकरी वाला अमल उसने संभाल के रखा हुआ था, मां बाप की खिदमत वाला अमल उसने संभाल के रखा हुआ था, नाफरमानी से रुकने वाला अमल उसने संभाल के रखा हुआ था। अब पहाड़ गिरा यानी चट्टान गिरी मुसीबत की, वो चट्टान थी, वो कर्जों की थी, वो बीमारियों की थी, वो दुखों की थी, वो तकलीफों की थी, वो मौत की थी, वो मुश्किलात की थी, मुंह बंद हो गया गार का, पर इसने वो अमल उस करीम की बारगाह में पेश किए, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हुआ, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए पत्थर तुम मेरे अमर से ज्यादा ताकतवर नहीं है, ए चट्टान इसे तीन इंसान नहीं हटा सकते, पर मेरा अमर मेरा हुक्म हटा सकता है, मेरा अमर मेरा हुक्म हटा सकता है, इसे तीन चट्टान तीन पत्थर नहीं हटा सकते पर मेरा हुक्म हटा सकता है, मेरा हुक्म हटा सकता है, मेरा हुक्म हटा सकता है। अल्लाह के गुस्से को ठंडा कैसे करें, सिला रहमी से, तौबा इस्तिगफार से, ये जो मैं कहा करता हूं ना, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, ये लफ्ज ऐसे है जो अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है, इस्तिगफार है। और एक लफ्ज मैं अक्सर कहा करता हूं, कफा बिल्लाह वलीयं व कफा बिल्लाह नसीरा, अल्लाह तू ही मेरा वली है, दोस्त है, और तू ही मेरा नसीर कहते हैं मददगार को, तू ही मेरा वली है और तू ही मेरा मददगार है। और ये पता कौन पढ़ते हैं, जब खिजर अलैहिस्सलाम कोई ठंडी सांस लेते हैं ना ऐसे, वकफो बिल्लाह वलीयं वकफो बिल्लाह नसीर, ठंडी सांस जब लेते हैं हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, ये लफ्ज उनके मुंह से निकलता है और बेसाख्तगी में निकलता है, बेसाख्तगी में निकलता है, जैसे जमजम लफ्ज उसी वक्त अम्मा हाजरा की जुबान से अचानक निकला, पहले से तैयार नहीं था, सात चक्कर लगाए, पानी नहीं था, बच्चा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियां रगड़ रहे हैं, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया इसके पांव की जगह पे पर मार, जिब्रील ने पर मारा और जब देखा तो आई पानी है। अब बेसाख्ता देखा तो पानी इधर उधर बह रहा है और उस वक्त कतरे कतरे की जरूरत थी, तो बेसाख्ता मुंह से जो लफ्ज निकला वो क्या निकला? बेसाख्ता। पहले से तैयारी तो थी नहीं, अल्लाह ने कह दिया था कि सात चक्कर लगाओगी मेरी नेक बंदी, फिर मैं जिब्रील को भेजूंगा, तेरा बच्चा पांव रगड़ेगा। ना ना ना, आजमाइशों पे आजमाइशें थी, इम्तिहान पे इम्तिहान थे, क्योंकि बड़े लोगों पे बड़े इम्तिहान होते हैं। बेसाख्ता, अचानक जो मुंह से लफ्ज निकला वो क्या निकला? जम जम, बस बेसाख्ता मुंह से निकला, अचानक बेसाख्ता। कौन सा अमल ऐसे है जो अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है? और नेकियों को तलाश करें। आप बैठे बैठे सोचें, रमजान आ रहा है, मैंने रमजान में कौन सा अमल ऐसा करना है कि जिसमें मैंने अल्लाह के गुस्से को ठंडा करना है? कौन सा ऐसा अमल करना है जिसपे अल्लाह राजी, अल्लाह को राजी करना है? और ये रमजान मेरा पिछले रमजान से हैरत अंगेज भी हो, बाकमाल भी हो, बेमिसाल भी हो, लाजवाब भी हो, यह रमजान मेरे पिछले रमजान से। यह सफर है जिंदगी का। आज पता चला कि नेकी जो हम कर रहे हैं यह भी जाया नहीं जाएगी। माल की नेकी की है, अमाल की नेकी की है, किसी की गालियां सह के उसके साथ नेकी की है, अल्लाह के हां ये भी बेकीमत नहीं है। अल्लाह के हां इसकी भी कीमत है, अल्लाह के हां इसका भी एक वजन है, ये चीज बेकीमत नहीं है, अल्लाह के हां इसका भी वजन है, ये चीज बेकीमत नहीं है, इसका भी अल्लाह के हां वजन है और तसीर है। अब मुझे ये बताएं, जब ये पता चल गया तो फिर क्या छोटी सी नेकी को हम आज के बाद छोड़ेंगे? हैं? क्यों छोड़ेंगे? बजहर उसकी नेकी छोटी सी थी। आप चूंकि यहां आए बैठे हैं पहले से नमाज के लिए, अगर अजान का जवाब ना देंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। बाज़ोकात मसले का पता नहीं होता, बंदा इतराज कर लेता है। अजान बाहर वालों के लिए होती है जो बाहर हैं, अंदर जो पहले से बैठे हैं उनके लिए नहीं होती, वो तो आए बैठे हैं। आज के बाद छोटी सी नेकी, छोटी सी नेकी, उस नेकी को हमने कैसे कैश करना है और फिर ऐश करना है। कैश करना है ना, कैश करेंगे तो ऐश करेंगे, और अगर जाय करेंगे फिर ऐश करेंगे। चलो मैं एक वाक्य सुनाता हूं। ये दाइयां होती ना बच्चों की डिलीवरी के लिए दाइयां, अब भी गांव देहातों में है। एक दाई को बंदा ले गया जी, वो बच्चे हैं तो उसकी डिलीवरी करनी है। मई बच्चे जनती गई जनती गई, एक बच्चा आ रहा है फिर उसके बाद दूसरा आ रहा है, दूसरे का तीसरा आ रहा है कि 40 बच्चे हो गए, 50 हो गए, मई जनती गई जनती गई। अल्लाह ये कहां से आ रहा? मई डर गई, उसने कहा हम जिन्नात हैं, तो डर ना, तेरी खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे, तो डर ना। जाते हुए माई ने को कहा झोली कर, माई ने झोली की तो उस झोली में कोयले डाल के दे दिए। कहने का वाह मजदूरी दी। कहने का तुझे राजी करेंगे, एने बाल जमायो ने, तुझे राजी करेंगे। माई ने क्या किया, वो कोयले फेंकती गई फेंकती गई। घर आई तो एक दो कोयले रह गए, तो उसने वो घर के किसी कोने में ना दामन को ऐसी अच्छी तरह झाड़ दिया कोयले में। रात का वक्त था, बेचारी सोई, सुबह उठी देखी तो उस कोने में से चमक आ रही थी। ऐसे देखा तो वो कोयले नहीं थे, वो तो लाल जवाहर थे। है?
मेरी उन्होंने झोली, मैंने जिसे कोयले समझा था, वो तो लाल लाल जवाहर थे, वो तो उठा के महफूज किया। अब भागी, जहां जहां फेंका था वहां कुछ भी नहीं था उसे, यानी अंदाजा था, मैंने यहां कोयला फेंका था, यहां फेंका था, यहां फेंका था, वो तो कुछ भी नहीं, कुछ था ही नहीं, बस वही था जो घर में उसकी झोली में दो चार कोयले बच गए। आज से पहले हमने नेकियों को छोटा छोटा समझा, और हमने नेकियों को समझा कि शायद नेकी आखरत में काम आएगी, अल्लाह वाले पहले दुनिया में काम आएगी, पहले दुनिया में काम आएगी, उसको कैश कर। आज से पहले यह समझा कि गुनाह से बच जाना, खता से बच जाना, इससे अल्लाह की क्यामत के दिन जहन्नम अजाब नहीं, नहीं, पहले वो दुनिया में भी काम आएगा, दुनिया में भी काम आएगा। कौन सा खिदमत का अमल ऐसा है कि करंट ने मुझे पकड़ा और किसी ने मेरी चीखों पुकार ना सुनी? कौन सा खिदमत का अमल ऐसा है कि जिसमें वो अमल सामने आ गया और उठा के उसने मुझे परे फेंक दिया और आज मैं जिंदा सलामत हूं? कोई नेकी ऐसी थी? हमारे एक तस्बीहाने के खिदमत करने वाले हैं, ये आज से कोई 21 साल पहले की बात है। ये फोल्डिंग तंबू नहीं होते दुकानों के आगे, उसको फोल्ड कर ऐसे ऐसे एक होती है, घरारी होती है, ऐसे घुमाते हैं तो वो इकट्ठा हो जाता है फिर फैल जाता है। साथ ही तार थी जो मीटर में जा रही थी, और मोटी तारों से निकल के मीटर में मोटी तार थी, वो उस घरारी में जो तार आई वो घिसती गई, रबड़ उससे कटता गया, कटता गया, कटता गया, जब जाके ना तार लगी लोहे को, इसको पकड़ लिया उसने। अब ये पकड़ा हुआ है, और बिजली का मिजाज है, बिजली सब कुछ बंद कर देती है और बंदे को उस वक्त फेंकती है जब कुछ नहीं होता। कहने लगा कि मैं पकड़ा हुआ हूं, तो मेरे साई का मुझे आवाज आई कि मैं तुझे कह रहा हूं छोड़ दे। कहा दूसरी दफा, मैं तुझे नहीं कह रहा छोड़ दे, सख्ती से। उसके बाद जब गुस्से से आवाज आई ना, जलाल की आवाज आई, कहा कि बिजली ने उठा के मुझे परे फेंका। जब फेंका को लोगों को पता चला ये तो पकड़ा हुआ था, फिर उठा के ले गए। कहा साथ एक गोदाम था, उन्होंने अपनी बोरियां पड़ी थी पटसन की, वो मेरे ऊपर डाली और गर्म दूध ले आए, कुछ चीजें, ये एक बदन दबाया कि बदन गर्म हो। कोई नेकी थी जो उस शक्ल में आई, कोई खिदमत थी जो उस आवाज, वो आवाज बन गई, साई की आवाज बन गई, और करंट ने पकड़ा हुआ है जहां उस जगह, और साई की जगह से 450 किलोमीटर दूर है वो जगह। कितना? 450 किलोमीटर दूर है। आज से पहले तो हमें ये पता चला कि नेकी आखरत में काम आएगी, नेकी से बंदा नेक बन जाएगा, नेकी से लोग नेक कहेंगे, सच भी है, आप काम भी आएगी, इसमें कौन सा झूठ है? पर ये नेकी मरने से पहले भी काम आएगी, मरने से पहले भी मेरे काम बनाएगी, और मरने से पहले भी मेरी जरूरियात की किफायत किफालत करेगी, करती है, की है, होती है मरने से पहले। मैंने आपको ये मिसालें दी हैं, मैंने बकायदा हदीस सुनाई है, आका कमली वाले का फरमान सुनाया है, अपने जिंदगी के फैसले बदलने होंगे, छोटी सी छोटी नेकी है उसको करके अपने दिल से पूछना होगा, हां बता किसके लिए किया, हां बता किसके लिए किया। छोटी सी छोटी नेकी करके भी अपने दिल से, अपने मन से, और नेकी और खिदमत या कोई भी नेकी है, माल की, जान की, बदन की, कोई भी नेकी है करके, और वाहवा मिले और शाबाश मिले तो डर जाना है झीप जाना है, सहम जाना है, डूब जाना है कि अल्लाह ये तो तेरे लिए था, कहीं इसका सिला मुझे दुनिया में तो नहीं मिल गया। और अगर कोई खता है और अल्लाह के लिए छोड़ दी है और अल्लाह की खातिर बच गए हैं तो उसको भी अल्लाह की खातिर बच के फिर अल्लाह की बारगाह में पेश करना है, जैसे कि गार वालों ने पेश किया, गार वालों ने पेश किया। मोमिन का तो थोड़ा सा सफर भी अल्लाह की बारगाह में है, फरमाया छोटी सी चीज चुभ जाए और सी निकले या आ निकले, अल्लाह कहता है इस पे भी निकल लिख दो। बुखार पे, एक दिन के बुखार पे 3 साल की जहन्नम की आग खत्म हो जाती है, एक दिन के बुखार पे। और फिर मैं जब अल्लाह अकबर कहता है, ऐसे हाथ उठाता है, ऐसे हाथ उठाने पे अल्लाह उसके हाथ से किए हुए सारी खताओं को अल्लाह उठा के पीछे फेंक देता है। और जब बांधता है हाथ और कयाम करता है तो उस कयाम करने पे अल्लाह फरिश्तों को कहता है, फरिश्तों देखो कौन सी ताकत ने इसे मेरे सामने खड़ा किया हुआ है और बिल्कुल जामित और साकित है। और जब रुकू में जाता है तो अल्लाह कहता है ये किसके सामने झुका है। और जब सजदे में जाता है तो अल्लाह पाक जितना इसका वजन है उतना सोना खर्च करने का सवाब देता है। मोटे लोगों को मुबारक हो, मोटियां को मुबारक हो, 9 लाख मुबारक। हाँ सजदे में जाता है ना मोटे खुश हो गए, लगता है सजदे में जब जाता है ना बंदा, जितना इसका वजन है अल्लाह इतना सोना खर्च करने का सवाब अता होता है और सदका करने का, सोना खर्च करने और सदका करने का सवाब देता है अल्लाह। और फरमाया जब बंदा अत्तहियात में बैठता है इसके दाएं और बाएं 70,000 फरिश्ते होते हैं, और जब ये सलाम कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता है, जब ये सलाम, फरमाया इस तरफ दाएं तरफ वाले जितने भी इंसान थे, फरिश्ते थे या जिन्नात थे, इंसान, और इंसान से मुराद कौन से इंसान, आज एक और खुशखबरी भी सुना दूं, एक वो इंसान है जो मैं आपको नजर आ, अभी हम नमाज पढ़ेंगे हमारे दाएं तरफ भी इंसान की सफ होंगी, बाएं तरफ भी, फरिश्ते जिन्नात नजर नहीं आते, अल्लाह ने छुपाए हुए हैं, हैं तो सही। एक वो इंसान है जो इस दुनिया से चले गए, रिजाल गैब है, अरवाज है, वो मौजूद है। जब बंदा उनको सलाम करता है तो वालेकुम सलाम कहते हैं और उनके सलाम में कबूलियत होती है। बड़े वजनदार बात है। आपने किसी को कहा तुझ पे अल्लाह सलामती भेजे, सलामती से मुराद तुझे बलाएं, वबाएं, आफात, बलियात, मसाइल, मुश्किलात से तू सलामती में रहे, बीमारियों से सलामती से रहे, मुसीबतें सलामती से रहे, तकलीफें सलामती से रहे, दुख सलामती, हर चीज से सलामती से रहे। अच्छा, मैं वो हस्ती नहीं हूं कि मेरी दुआ, ये असल में सलाम दुआ है, सलाम क्या है, सलाम क्या है, मेरी वो ताकत हस्ती नहीं है कि मैं कहूं, क्या पता मुझे सलाम का जवाब लौटाने वाली वो हस्ती हो, वो फरिश्ते, वो नेक जिन्नात, वो नेक रूहें, वो अल्लाह का कोई नेक बंदा, जवाब लौटाने वाला वो हो जिसकी अल्लाह की बारगाह में सुनी, अल्लाह ने कहा इसके सलाम इसने किया था, इस सलाम के जवाब में इसकी वो फला आफत थी जो खजूर के दरख्तों से नीचे आ चुकी थी, फलाम बला थी, फलाम वबा थी, इसकी नस्लों में कुछ माजूर, मजबूर, अंधे लूले आने थे, इस सलाम की सलामती से बचा दो इसको, इस पे कोई आफत टूटनी थी, इस पे कोई मुसीबत टूटनी थी, इस पे कोई दुख आना था, इस पे कोई तकलीफ आनी थी, उसकी दुआ ऐसी है, उसने इसके सलाम पे सलामती भेजी है, सलाम पे सलामती भेजी, सलाम पे सलामती भेजी है। अल्लाह पाक कहते हैं अच्छा ऐसा करो
इस सलामती को कबूल है मेरी, इसने दुआ दी है, उसने इसकी दुआ के बदले दुआ दी है। हल जजाउल एहसान इल्लाल एहसान, एहसान के बदले एहसान। इसने सलाम किया, उसने सलाम की जवाब दिया, यानी इसने दुआ भेजी, उसने दुआ भेजी। इसकी दुआ इस काबिल नहीं थी, लेकिन उसकी दुआ, फरिश्तों की दुआ, जिन्नात की दुआ, या अल्लाह की किसी नेक वली की दुआ इस काबिल थी। लिहाजा आओ इसकी दुआ इस पे लौटाओ और इससे बलाएं, आफतें, मुसीबतें, तकलीफें और पता नहीं क्या कुछ टाल। क्या आज के बाद छोटा सा अमल छोड़ने के काबिल है? छोटी सी नेकी। हमारा तो नमाज का सलाम भी हमें मुसीबतों और परेशानियों से और दुखों और आफतों से और आफात और बलियां, हमारा तो नमाज का सलाम भी हमें यह बचा रहा है, कितनी कितनी मुसीबतों और तकलीफों और परेशानियों से बचवा रहा है हमारा नमाज का सलाम, जिसे हम चंद लम्हों में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, चंद लम्हों में। अब देखो ना, नमाज के सलाम में कोई हम इतनी एक देर तक, कोई दो मिनट, तीन मिनट, पांच मिनट नहीं, बस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमेशा सलाम में कंधे के कोने को देखना है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बस इतना देखना है। हमारा तो ये छोटा सा अमल भी हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों, तकलीफों, परेशानी, आफतों और बलाओं से नजात देते। आज के मैं टीवी प्रोग्राम में, मुझे एक साहब ने बताया, उन्हें कैंसर हो गया। कहा कि उन्होंने रोजाना हजारों की तादाद में हामीम लायुन सारून पढ़ा, कैंसर खत्म हो गया। हामीम लायुन सारून, बड़ी पुरानी बात है। मैं क्वेटा में था, अभी मुझे नदामत है, दो दफा क्वेटा के दर्श का ऐलान हुआ, लेकिन क्वेटा के हालात की वजह से फिर दर्श ना हो सका। अभी भी जाना था, इसी जुमे गालिबन जो है क्वेटा का, आइंदा जुमे। तो एक साहब मुझे मिले, वहां बलोचों के आपस में कबाइल हैं बड़े बड़े, फिर उनके झगड़े भी बहुत होते हैं और बहुत ज्यादा, उसके साथ बहुत ज्यादा गार्ड होते थे उस बंदे के साथ। वो सरदार था, वह बहुत बड़ा सरदार था। किसी ने बता दिया मेरे बारे में कि ये कुछ वजीफे जानता है और दो चार वजीफों की कोई कहानियां, कोई दास्तान, कोई सच्ची बातें बता दी। तो मेरी उस बंदे से मुलाकात हुई। आप नहीं सोच सकते कि कितना बड़ा मजमा उसके साथ था और उसके पास था, जो उसके गार्ड थे, बंदूकों वाले और सारे। कह लगे जिंदगी से तंग आ गया हूं, ये कुछ है, थक गया, कोई इसका हल? मैंने कहा हामीम लायुन सारून, हिफाजत का, सिक्योरिटी का। देखें, शरीयत में बुलेट प्रूफ गाड़ी रखना जायज, गनमैन रखना जायज। हजूर ने अपने गनमैन रखे थे, आपको बता दूं, हजूर के साथ हर वक्त गनमैन चलते थे, तलवारों के साथ, उस दौर की तलवारें होती थी। फिर एक वक्त आया, अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे हबीब, हमने आपकी हिफाजत का जिम्मा खुद ले लिया है, बस। गनमैन रखना कोई नाजायज तो नहीं है। अहलुल बैत, बड़ी बड़ी हस्तियां उनके साथ, उनके मुहाफिज होते थे, नाजायज नहीं है। अगर अपनी कोई जान माल की हिफाजत के लिए रखता है तो कोई उसमें गुनाह तो नहीं है। तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा कि आपके ये हिफाजत वाले गनमैन भी रहे, आप सारा दिन हामीम लायुन सारून पढ़ें। कह रहे मुझे ये लिख के दे दे। मैंने लिख के दे दिया, पढ़े लिखा आदमी था, दोहराया, याद कर लिया। बस मेरी वो एक मुलाकात उनसे, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। उनके जानने वाले जिनके जरिए से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो कहते थे कि जब से मैंने ये पढ़ना शुरू किया है, एक सुकून, एक चैन, एक राहत, एक हिफाजत और एक बरकत का अनोखा एक निजाम है। अब मैं अपने आप को ऐसा पुरसकून महसूस करता हूं जो अब से पहले नहीं करता। और कुदरत का निजाम यह है कि उसका करीबी रिश्तेदार, وہ غیر طبعی موت مرا, قتل کیا گیا, اور یہ لمبی عمر لے کے مرا اور کسی گولی سے نہیں مرا. اگر تقدیر میں گولی لکھی ہے, موت لکھی ہے, اللہ کے ہاں وہ بھی ایک حکم ہے. حامیم لا ینصرون, ایک اللہ والے تھے وہ یہاں تک بتاتے تھے, راکٹوں راکٹ سے بھرا ہوا جہاز ہو اور بمبوں سے بھرا ہوا جہاز ہو اور ان جہازوں کو کہا جائے, 70,000 جہاز ہو, کہ ایک بندہ فلاں جگہ بیٹھا ہے کھلے میدان میں, کسی بند غار میں نہیں, کھلے میدان میں, اور ان کے اوپر یہ سارے راکٹ اور سارے بم اس پہ مارنے ہیں اور اس کو ختم کرنا ہے. کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو حامیم لا ینصرون کو یقین 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 سے پڑھے گا تو سارے راکٹ اور بم اس کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکیں گے. ساری دنیا کی فوجیں اور ساری دنیا کے بادشاہ یہ چاہ لیں کہ ہم اس بندے کو ختم کریں گے اور اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور حامیم لا ینصرون وہ وظیفہ ہے جس کی حدیث میں باقاعدہ صراحتاً واضح ہے کہ غزوہ خندق میں جب آقا کے پیٹ مبارک پہ دو پتھر تھے اور ہر صحابی اور اہل البیت کے پیٹوں پہ پتھر بندے ہوئے تھے اور غربت فقر خوف دشمن اور خندق کھود رہے ہیں کہ دشمن گھوڑا بھی پار نہ کر سکے, آگے ایک بہت بڑا گڑا ہو, اور وہیں حضور نے فرمایا سارے صحابہ اہل بیت کو کہ سارے پڑھو حامیم لا ینصرون. یہ غزوہ خندق میں حضور نے فرمایا تھا. اور قرآن میں بھی یہ لفظ ہے, حامیم علیحدہ ہے, لا ینصرون علیحدہ ہے, اور حدیث تفسیر ابن کثیر ہے, بے شمار معتبر احادیث ہیں جو ہم نے جمع کی ہیں, ساری ساری جمع کی ہیں. یہ اکابر پر اعتماد ہمارا پیج ہے اس پہ, اور اس کی چھوٹا سا کتابچہ بھی ہے حامیم لا ینصرون کا, اس میں سارے محدثین مفسرین فقہا اور کے سارے واقعات جمع کیے ہیں حوالے حامیم لا ینصرون. اور قرآن میں حامیم کتنی دفعہ آیا ہے؟ 7 بار آیا ہے. یہ واحد حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات جتنے بھی ہیں, کاف ہا یا عین سوا, حروف مقطعات حامیم عین سین کاف, حروف مقطعات نون, حروف مقطعات یہ حروف یاسین, الف لام میم, حروف مقطعات الف لام میم صاد, حروف مقطعات, یہ واحد حامیم ہے جو پورے قرآن میں 7 بار آیا ہے. حامیم حامیم لا ینصرون لا ینصرون لا ینصرون. کینسر, کہا کینسر ختم, کہا جادو ختم, کہا دشمن قاتلانہ حملہ. میں آپ سے جو تسبیح خانے کے لیے حامیم لا ینصرون کا چندہ مانگتا ہوں, ہر جمعرات اس کی منت اور درخواست کرتا ہوں کہ 313 بار حامیم لا ینصرون میرا, میری نسلوں کا, تسبیح خانے کا, اس سارے نظام کی حفاظت, کفایت, کفالت, مدد, برکت کا ایسے نہیں مانگتا کہ ہمیں پل پل چندے کی ضرورت ہے, حفاظت کی ضرورت ہے, کفایت کی ضرورت ہے, وسعت کی ضرورت ہے کہ اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت 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 عطا فرمائے. الحمدللہ میں جب لوگ میرا چندہ دیتے ہیں, مجھے پوری دنیا بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے گڑ گڑا کے اہتمام سے حامیم لا ینصرون کو اپنا وظیفہ بنایا ہوا ہے اور وظائف کے ساتھ. یہ خیر پھیل رہی ہے, یہ برکت پھیل رہی ہے, یہ عافیت پھیل رہی ہے, اور ہم اس خیر کے پھیلانے والے بن جائیں. یہ خیر کے پھیلانے والے اور اس خیر کو لے کر چلنے والے ہم بن جائیں. اور جو خیر چھوٹی سی ملی ہے اسے اللہ کے خزانوں میں رکھوائیں کہ اللہ یہ میری امانت ہے, تیری بارگاہ میں پیش ہے, जब मेरी मुश्किल परेशानी आए ये मुझे लौटा देना। जैसे कि मैं एक अमल बताया करता हूं, सोते वक्त किस वक्त जो सो रहे हैं वो भी बोले ना, जो सो रहे हैं वो भी बोले किस वक्त, तस्बीह खाने में सोते वक्त। सोते वक्त जो बंदा ये तसव्वुर करे कि मेरा दिल एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, मैंने बॉक्स खोला और उसमें कलमा, पहला कलमा पढ़े सारे, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मैंने अपने दिल का बॉक्स खोला, संदूक दिल का बॉक्स है, संदूक है, खोला, पहला कलमा रखा और बंद कर दिया और सो गया और क्या कहा कि मौला ये कलमा अमानत है, मेरे आखिरी वक्त में मुझे लौटा दे। आप बोलो क्या पता मैं आज के बाद नींद से कभी उठ भी ना सकूं। कितने बेशुमार वाकयात आपके सामने कि बंदे सोए फिर ना उठ सके। हमें बाल छोटे करवाने होते थे तो वाले साहब रहमतुल्लाह एक नाई होता था, हाजी नाई कहते थे उसे, उसका नाम हाजी अहमद था, उसके पास भेजते थे। उसकी सफाई सलीका साफ सुथरा, इतना ज्यादा सफाई सुथरी का मिजाज था उसका। उसका हम्माम मशहूर था, सुबह सुबह सर्दियों में लोग आते थे, मशहूर था, साफ सुथरा, बहुत ज्यादा सलीकामंद इंसान था। आज की रात में लोग आए, दरवाजा खटखटा रहे हैं, खोली कोई नहीं रहा। दरवाजा तोड़ा तो हाजी नई मरा हुआ था और चींटियों की लाइन लगी हुई थी। मुझे याद है कि हमारी मस्जिद में एक जगर होता था, सुनार होता था, नेक आदमी था। इशा की नमाज कट्टी पड़ी, सोया रात, सुबह ऐलान हो रहा था, उन्होंने कहा कि रात सुबह उठे नहीं, हमने जाके देखा तो फौत हो गए। अच्छा, सिर्फ ये आज की रात के लिए नहीं है अमल, ये जिंदगी भर के लिए। सोते हुए दिल का तस्वर करें, दिल मेरा एक डब्बा है, बॉक्स है, मैंने पहला कलमा एक दफा पढ़ा, उसमें रख के ढक्कन बंद करके अल्लाह की अमानत अल्लाह के हवाले कर दिया और ये अल्लाह से अर्ज किया कि या अल्लाह जब मेरा आखिरी वक्त हो ये कलमा मुझे लौटा दे। अच्छा ये बताओ, अल्लाह से बड़ा कोई अमानतदार है जो मेरा रब खयानत को पसंद करता है, जो मेरा रब खयानत को ना पसंद करता है वो खुद क्या खयानत कर सकता है, नौजबिल्ला बददियानती कर सकता है, हैं? मेरा रब दियानतों वाला, अमानतों वाला। मेरा अल्लाह कहता है ठीक है मेरे बंदे, तेरी अमानत मेरे पास है, आखिरी वक्त तो आना तो है, इले फिर आखिरी वक्त में ये अमानत। उसके लिए जरूरी नहीं कि लोग मेरे कलमे के गवाह रहे, जरूरी नहीं है। बाज़ोकात अल्लाह दिखा देता है, ऐसे वाकियात भी हैं, बंदे को कहो मेरे कलमे के गवाह बन जाओ, और बाज़ोकात अल्लाह का निजाम है, अल्लाह उसको वो कलमा लौटा देता है, उसको वो कलमा लौटा देता है। छोटी छोटी नेकियां चुनते जाएं और अल्लाह के खजानों में रखवाते जाएं। आज एक बैरून मुल्क से कॉल आई, साउथ अफ्रीका से, मैंने कोड देखा तो दो था, दो नंबर, एक नंबर अमेरिका का होता है, अमेरिका कनाडा का एक है, दो तो साउथ अफ्रीका से थे। कह लगे मैंने आपसे कहा था मेरे जेरे नाफ मसाइल हैं, आज के ये मेरे टीवी प्रोग्राम में उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी, आप सुनिएगा, तो आपने मुझे बैतुल खला की दुआ बताई थी, कहा कि मैं जिस माहौल में रहता हूं वहां पर्दा लिबास जिस्म का ढका होना बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस बैतुल खला की दुआ ने मुझे यह फायदा दिया है कि दीवार और गैर महरम मेरे लिए एक चीज है। और अगली बात और कही, लगे यहां काले जो हैं ऐसे खाम खा लड़ पड़ते हैं, छुरियां मार देते हैं, खंजर मार देते हैं, रिवाल्वर गोली मार देते हैं, कोई मैं देखता हूं कि इस काले के तेवर बदले हुए हैं, मैं बैतुल खला की दुआ पढ़ना शुरू कर देता हूं, 5-7 दफा ही पढ़ता हूं वो ठंडा हो जाता है, देखता हूं ना कि इसका ये बदला हुआ बंदा है, नुकसान पहुंचा सकता है, बैतुल खला की दुआ ही मैं पढ़ना शुरू कर देता हूं उसको देख के, बस उसी वक्त। क्यों? असल में बैतुल खला की दुआ है आग के लिए, वो जिन्नात की आग है, वो जज्बों की आग है, वो गुनाहों की आग है, या वो इंतकाम की आग है, या छीना झपटी की आग है, या चोरी और डाके की आग है, वो तो है आग के लिए। क्यों? जिन किस चीज से बने? जिन्नात किस से बने? मिट्टी से। मिट्टी से तो आग का इलाज है। कहने लगा कि मैं आग के लिए पढ़ता हूं, और आगे से वो बंदा ठंडा हो जाता है, मुझे तकलीफ भी नहीं देता और मुझे परेशान भी नहीं करता, ना मेरे लिए छुरी, ना खंजर, ना गोली, ना लूटमार। हत्ता कि मुझे एक बंदे ने कहा कि मैं जब यहां आया था तो मुझे किसी ने कहा था बाहर निकला कर खाली जेब ना निकलना, अगर बाहर निकलना तो खाली जेब ना निकलना, 5-10-20 डॉलर पैसे जेब में डाल के निकलना, लूटने वाला आया और अगर तेरी जेब खाली हुई गुस्से में गोली मार खंजर मार के चला जाएगा, गुस्से में अगर आया भी सही और तेरी जेब खाली हुई तो फिर उसको गुस्सा आएगा, इसी गुस्से में मार के चला जाएगा, और अगर जेब से कुछ निकल जाएगा तो लूट के चला जाएगा, मार के नहीं जाएगा, तो लिहाजा जब बाहर निकलना खाली जेब ना निकलना। और ये कहते हैं कि बैतुल खुला की दुआ बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, ये कहते हैं कि जब मैं पढ़ता हूं और उनका देखता हूं कि ये बंदा जो है मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, मैं 5-7 दफा बस इतना मैंने पढ़ा है कि 5-7 दफा पढ़ता हूं, पढ़ते ही वो बंदा जो है बस उसके शर से बच जाता हूं। हमें तो छोटी छोटी नेकियां फैलानी हैं और लोगों को सहारे देने हैं। इस वक्त बताऊं लोग बड़े मायूस हैं, लोग बहुत मायूस हैं। हमने लोगों को इतना डराया है अजाब से, रहमत को बयान नहीं किया, सवाब को बयान नहीं किया, फजाइल को बयान नहीं किया। उम्मत का एक तबका है जो फजाइल को बयान कर रहा है, वरना फजाइल सवाब नेकी इसको बयान ही नहीं किया, इसको बयान ही नहीं किया। अब देखिए मैंने आपको क्या बयान किया, सिर्फ डर गया। वाली मन खाफा मकाम जन्नत, उन्हें कहा तू नी एक जन्नत की बात ना कर, दो की बात कर। एक अल्लाह वाले से मैं उनकी सोहबत में जाके बैठता था अपने मुर्शिद की बैत से पहले, उनका नाम हकीम वहीदुद्दीन सर रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली भी थे, दिल्ली के थे। मुझसे कहने लगे कि मैं अपने दोस्तों के साथ मेरठ से दिल्ली आ रहा था, भूख लगी रास्ते में, हमने कहा कोई सराय होटल कहीं कुछ ना मिला, किसी ने कहा कि ये सामने जो गांव बस्ती आ रही है ना इसमें एक मुसलमान रहता है, उससे कुछ खाना मिला मिल जाए।
हमने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, आ जाओ। हम गए तो मुसलमान बाबा था, बूढ़ा था, गोश्त काट रहा था और सात सुअर की सीरी पड़ी हुई थी, खिंजीर की सीरी सात पड़ी थी और खिंजीर का गोश्त काट रहा था। और पहले गोश्त काट के ना उसको धागे में पिरो के खुश कर लेते थे। मैंने अपनी नानी अम्मा को भी देखा और फिर वो गोश्त। हम बैठ गए, हमने कहा बाबा जी क्या हाल है, खैरियत है? हैरान हुए कि ये तो सुअर है। उन्होंने कहा मैं बस, मेरा कोई माई बाप नहीं, अकेला हूं, यहां रहता हूं, बाकी सारे यहां गैर मुस्लिम है, एक मुसलमान मैं ही इस गांव में रहता हूं। तो हमने कहा बाबा जी आप मुसलमान है? करे हाँ मैं मुसलमान हूं। बातचीत हुई तो हमने कहा बाबा जी ये तो सुअर है, खिंजीर है, तो मुसलमान के हाथ तो ये हराम है। कहा हैं, मुझे तो पता नहीं। हाँ ऐसे कहा ना, तो बाबा जी गिर गए। बातचीत होते होते ना जब हमने कहा कि बाबा जी ये तो सुअर हराम है, इस्लाम में तो मुसलमानों के हाथ तो हराम है, उन्होंने बताया मैं ऐसे सुअर करता हूं, काटता हूं, धागे में पिरो देता हूं, फिर मैं खाता रहता हूं, फिर जब खत्म हो जाता फिर और कर लेता हूं। तो जब आखिर में इन्होंने कहा कि बाबा जी ये तो हराम है और ये तो बाबा जी एकदम ऐसे गिरे। हमने कहा बेहोश हो गए, पानी डाला, पता चला बाबा जी चले गए। अल्लाह अकबर, अजीब बात। हमने समझा कि शायद हमें ही तजीज और तकफीन के लिए अल्लाह ने ड्यूटियां लगाई थी। हिंदू मिल गए, कब्र खोदी, मुसलमान सिख सारे मिल गए। हम तीन बंदे थे, हमने तीनों ने जनाजा पढ़ा, दो पीछे एक आगे। हकीम साहब रहमतुल्लाह फरमाने लगे मैंने जनाजा पढ़ाया और उसको तदफीन की। अब भूख से मारे हुए थे तो रोटी खाने गए थे, आगे बाबा मर गया और बाबे को संभालने लग गए। और मैयत को नहलाना करना एक काम है, पूरा एक जिम्मेदारी है। आगे गए तो एक सराय मिली, होटल मिली, खाना खाया। जब पैसे देने लगे तो कमर बंद होती थी, कमर से बांधते थे ऐसे हिमियानी पैसे, वो देखा तो है ही नहीं। अब परेशान कि इसको पैसे कैसे दे, अपनी कुछ चीजें रखवा के उससे कहा भाई हम आके लेंगे, हम पैसे हमारे ऐसे ऐसे हैं, हम देंगे। वापस लौटे और मुझे यकीन गालिब था कि वो सारा कब्र में मैं उतरा था मैयत को लिटाने के लिए, तो वो कब्र में ही गिरा है, मुझे यकीन था, और कहीं नहीं गिरा। अब रात हो चुकी, हमने जाके कब्र खोली और कहा कि हमारा एक साथी था, वो जरा तकड़ा सेहतमंद था, उसने कब्र में से मिट्टी हटाई, हटाते हटाते करते हाथों से सब कर रहे हैं, कुदाले कहां थी, ताजा कब्र थी। तो कब्र खोली ना, जैसे ना अत्तहियात में बैठते हैं, ऐसे ही हकीम साहब रहमतुल्लाह ने मुझे अत्तहियात में खुद बैठ के दिखाया। बैठ के कहने लगे हकीम जी मैयत तो ना है? उन्हें कभी तो दफन करके गए, कहां है? हट जा मैं देखता हूं। अब नजर नजर का फर्क देखना जरा, उसकी नजर खुली नहीं थी, उसकी नजर चेहरे की थी, इनकी नजर दिल की थी। फर्क समझना गौर से मेरी बात को, अल्लाह से दिल की आंखें मांगा करो, और ये दिल की आंखें किसी फकीर की सोहबत में मिलती हैं, और दिल की आंखें किसी की नजर लगने में मिलती हैं। शाला ते को चंगी नजर लगे, बुरी नजर लगती है तो अच्छी नजर भी लगती है। पहले भी हकीम सब मुझे खुद बैठे अत्तहियात कितना ऐसे बैठ के दिखाया, देखा तो फरमाने लगे मैंने देखा कब्र तहत पे नजर वसी है और वो बंदा बाबा बैठा सामने तख्त पे कुरान पढ़ रहा है, और मेरी हिमियानी कहने लगे ये पढ़ी हुए उठा ले बेटा, वो तेरी थी, अमानत है। मैंने कहा बाबा जी ये मकाम कैसे मिला? कहा वो उस थोड़े से खौफ की वजह से। बस है स्वर हराम है। अच्छा बाबा गिर गया, वाह मौला है स्वर हराम है, बाबे बेचारे को पता ही नहीं। सारी जिंदगी गैर मुस्लिमों के साथ जिंदगी गुजारी, बचपन से पचपन, पचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, उसे पता ही नहीं किसी बस। और इस बात पे बाबा मर गया
और अल्लाह ने कहा तेरी ये हैं और इसमें मेरी जात का खौफ और मेरे हलाल हराम जायज नाजायज का खौफ, बस यही खौफ, जा पिछली सारी माफ है पानी फेर दिया, आ मैं तेरे बंदों को दिखाऊंगा अपने बंदों को कि देखो मेरे बंदे मैं वो करीम हूं, थोड़ी सी है पे भी जन्नत के दर्जे दे दे। वलिमन खाफा मकाम रब्बी ही जन्नतान, ये सूरत रहमान की आयत है ना, ये सूरत रहमान की आयत है, किसकी? सूरत नाजियात की, रहमान की, मैं तो कह रहा था वो कह रहे नाजियात की, जन्नतान बुधा मतान ऐनान। तो मेरी दरख्वास्त आपके खिदमत में है कि उम्मत को तसलियां दें, तशफी दें, टूटी हुई है, लोग टूटे हुए हैं, उन्हें छोटे छोटे टिप्स बताएं, उन्हें छोटी छोटी चीजें बताएं, उनके अहवाल में छोटा छोटा निजाम दें, लोगों को तसली चाहिए, लोगों को रास्ता चाहिए, लोगों को मंजिल चाहिए। अगर लोगों को तसली ना चाहिए होती तो मेरी तरफ देखो, फिर एक बात बता रहा हूं, लोग तोता फाल्स के सामने ना बैठे होते, उन्हें पता है ये तोता फाल वाला मुझे बताया था भाई आपने कहां बैठा है, मैंने देखना है उसको, मुझे कुछ अहबाब ने बताया था कि लाहौर में फला फला जगह बैठा है, टेलीनार के नंबर में मैसेज आए थे, मुझे टेलीनार वाले मैसेज इकट्ठा करके दे, कुछ लोगों ने बताया कि ये तोते फाल वाला अभी भी लाहौर में एक दो जगह पे बैठे हैं। मैंने बड़ा अरसा हुआ 40 साल हो गए कोई नहीं देखा, देखा था सही, हाँ था 18 देखो तो ये क्या निरी तसली, सब तसली है सब कुछ। तोते फाल वाला 5-10 रुपए उस दौर में, मेरे दौर में मुझे याद है 4 आने 8 आने अब कोई 50-100 लेता होगा, वो खुद मफलूकुल हाल है बेचारा, फुटपाथ पे बैठा रोटी कट्ठी कर रहा, अगर ये सब कुछ था तो एक तोते को कहता उठा लिफाफा निकाल उसमें से लॉटरी है। लोगों को खबर है ये निरी तसलियां हैं, लेकिन लोगों को यही तसली भी चाहिए, और अगर आप सच्चे तसलियां दे दें, सच्ची तसलियां दे दें, सच्चे मेरे कमली वाले के नाम की बरकतें, अल्लाह के नाम की बरकतें और अहादीस और फजाइल और वजायफ और तस्बीहात और अजकार बता दें, तो लोगों को और क्या चाहिए। ये तोता फाल, ये हाथ की लकीरें देखने वाले, ये जैचे बनाने वाले लेने लगी हुई हैं, हैं? हाँ हाँ, 2-4 पामिस्ट्री के हाथ मैं भी देखता हूं, एक साहब को मैंने उस दिन हाथ देखा, 1.5 घंटा तक मैं उसके हाथ को ऐसे लेके जो बैठा उसका ग्राफ बनाया लकीरों का, धमाके होते रहे, मैंने पहले पिछली जिंदगी बताई, फिर आगे इल्म है, यकीन की हद तक नहीं है, इल्म की हद तक है, यकीन की हद तक बात नहीं करता। ओहो हो, मुझे कहने लगा आज तक आपने बताया नहीं, मैंने कहा मैं हाथ बताऊं तो फिर 1 लाख लोगों को 10 मिनट में वजीफा बताऊं, फिर 10 लाख लोगों के हाथ देखो तो सारी हयात यहीं गुजर जाए, वो हाथ देखना घंटा मांगता है पूरा। थोड़ा सा मैं पामिस्ट्री का इल्म जानता हूं, लेकिन इल्मी इल्म की हद तक मैं वाजे कह रहा हूं, तकदीर खैर ही व शर रही मिन अल्लाह ताला। अगर ये न होता तो फिर इन जैचा बनाने वाले, तकदीर की किस्मत बताने वाले, और ये मेरा बुर्ज क्या है, मेरा सितारा क्या है, सियारा क्या है, लोगों को कुछ तसलियां भी चाहिए। क्यों तसली के ऊपर फजाइल हैं? लबासा तहूरुन इंशाअल्लाह, फरमाया जो मरीज के पास जाए सिर्फ तसली के 2 बोल बोले, कोई फूलों के हार 1 रुपया दे 4, कोई गुलदस्ता, कोई मिठाई का डब्बा, कुछ भी नहीं, किसी मरीज के पास जाए, हाल अहवाल पूछे, तसली दे, अगर सुबह जाए तो शाम तक 70,000 फरिश्ता इसके लिए दुआओं में लग जाता है। लोगों को ये तसली के बोल भी चाहिए। आप किसी मरीज के पास जाएं, कुछ ना लेके जाएं, सिर्फ उससे हाल अहवाल पूछें, तसली के बोल दे के आ जाएं। अल्लाह मेरा कहते हैं, उसका हबीब सच्चा मेरा कमली वाला फरमाते हैं, इस अमल पे 70,000 फरिश्ता इसके लिए दुआओं पे लग गया। 70,000 फरिश्ता इसके लिए दुआओं पे लग गया, लग गया। अगर सुबह जाता है तो शाम को जाता है तो सुबह तक। तो लोगों को तो झूठी तसल्लियां भी। मेरे भाई साहब के पास एक अम्मा बुरी आई। एक साहब थे, उनका कार स्टैंड किराए की कारें चलाते थे। कुछ तनाजा हुआ, फिर वो कत्ल हो गए। तो उनकी अम्मा, मुझे भाई ने बताया कि पुत्रा इतना जाफरान देचा, इतनी मुश्क देचा, इतना कस्तूरी देचा, इतना कफूर देचा। उन्हें कहा, अम्मा क्या कह रही हैं, इतनी महंगी चीजें हैं। उन्हें कहा, एक पीर है तो तवीज लिख दे। अम्मा ये पीर तवीज नहीं लिखते, फिर हमारे पास वापस ले आते हैं आधी कीमत पे। मैं ये काम नहीं करता, मेरे बाप दादा ने मुझे काम नहीं सिखाया। तो ना ले ये चीज। उसने नाम बताया तो उसने कहा, उसके बंदे तो रोज मेरे पास आते हैं, ये चीजें आप ले लें जनाब आधी कीमत में। मैंने कहा मैं लेता। मैं आके माओ कूड़ा पी रही, आके पुत्र दे गैड़ी को कूड़ भांदे। अब मैं इसका तर्जमा करता हूं, पुत्र दे बेटा दे गैड़ी को, जो बेचारा किसी मुसीबत में फंसा हुआ है उसको झूठ भी अच्छा लगता है। गैड़ी को कूड़ भांदे, जो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है उसको झूठ भी अच्छा लगता है कि मैं तेरा मसला हल हो जाएगा, तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। एक साहब थे मुल्तान में, उनसे कोई वारदात कत्ल हो गए। अब वो मोटरवे पे इंटरचेंज बन गई वो जगह, मैं नाम नहीं लेता। पहले वो गांव था, अचानक ये मुल्तान कराची वाली मोटरवे निकली ना, अब वो इंटरचेंज बन गया। पहले वो गांव था एक गुमनाम, उस गुमनाम गांव में आके वो बंदा आया और आके हकीम भी बन गया, पीर भी बन गया, आमिल भी बन गया। मेरे पास आते थे वो साहब, बड़ी उम्र के थे। मुझे कहने लगे कि मैं लोगों की किस्मत का हाल बताता हूं और मेरी किस्मत यह है कि रूपोश हूं। मैं रूपोश हूं। और कहा कि मुझसे कहने लगे कि सारी ऐसी मेरी बातें होती हैं, लोग मेरे पीछे पीछे हैं। मुझसे एक लफ्ज उसने कहा, आज भी याद है, कहने लगा कोई सच्चा इल्म मुझे मिल सकता है? ये तो झूठे इल्म का हाल है, अगर मेरे पास सच्चा इल्म आ जाए तो फिर क्या होगा? ये कुरान सच्चा इल्म है, मेरे कमली वाले का फरमान सच्चा इल्म है, ये हामीम ला युन सारून सच्चा इल्म है, ये सिला रहमी करके अल्लाह से खजाने लेना सच्चा इल्म है, ये अल्लाह के गुस्से को इस्तिग़फ़ार बुझाता है सच्चा इल्म है, ये रमजान का इस्तकबाल और रमजान में अल्लाह को राजी करने का निजाम सच्चा इल्म है, ये बरकतों के दरवाजे खुलवाना सच्चा इल्म है, ये अभी से जरूरतमंद ऐसे जो सवाल न कर सकते हो उनके लिए राशन का निजाम, उनकी जरूरियात का अभी से सोचना। मैं दूसरी दफा कह रहा हूं, जो सवाल ना करते हो। मैं तीसरी दफा कह रहा हूं, जो सवाल ना करते हो। अभी से सोचना। अपकरी खिदमत खल्क ने एक राशन का एक जो है एक हमने एक तोड़ा बनाया है, जिसमें उसमें साबुन और पता नहीं मशरूब और चावल आटा और चीनी और दाल और पता नहीं क्या क्या, कि अभी से हमने वो एक तोड़ा बनाया है। पता नहीं हमारी नियत क्या है, वो तो अल्लाह का मामला है, कि अबकरी खिदमत खल्क राशन का एक जो है बैग, अबकरी खिदमत खल्क राशन बैग, वो हमने बनाया है ताकि लोग वो ज्यादा से ज्यादा तकसीम करें और लोगों को दें। अभी से आप नेकियों की तैयारी, इन अमाल की तैयारी अभी से।
एक बुजुर्ग थे, मैंने उन्हें आंखों से देखा, आंखों से देखा।
अब वो लफ्ज सुने जरा गौर से, मैंने खुद कानों से सुने, आंखों से देखे। अब वो गौर से लफ्ज सुने, दुआ करवाते हुए कहने लगे, अल्लाह मेरे मुंह से कोई ऐसा बोल निकला, ऐसा लफ्ज निकला, ऐसा अमल हुआ, मुझे पता नहीं मेरा ईमान चला गया हो, अल्लाह मैं फिर से ईमान की तजदीद करता हूं। और फिर पहला कलमा पढ़ते थे। मेरे हजरत, मेरे मुर्शिद हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बाद जनाजे ऐसे होते हैं, जरा गौर से सुनना, दिल थाम के सुनना ये लफ्ज जो अभी कहने लगा हूं, अपने मुर्शिद का फरमान। फरमाया, बाद जनाजे होते हैं, लोग उनके जनाजे पढ़ रहे होते हैं, जबकि उनके मुंह से कोई बोल ऐसा निकला होता है कि उनका ईमान कब का चला गया होता है, कोई अमल ऐसा होता है, कोई बोल ऐसा होता है, कोई काम ऐसा होता है, वो क्या करते थे, हर वक्त ईमान की तजदीद करते थे। हदीस में भी आता है, अपने ईमान की तजदीद क्या करो, वो क्या करते थे, हर दुआ में कहते थे। मैंने उनकी दो तीन दुआओं में शामिल हुआ, एक परदेसी मुसाफिर थे, हर दुआ में कहते थे, या अल्लाह क्या पता मेरा कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा कॉल, कोई ऐसा फेल, कोई ऐसी जिससे मेरा ईमान चला गया हो, लोग तो मुझे मोमिन समझ के मेरा जनाजा पढ़ रहे हो और मैं पता नहीं कब का काफिर हो गया हूंगा, अल्लाह मैं फिर से कलमा पढ़ता हूं और अपने ईमान की तजदीद करता हूं। पहला कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा, आज हम भी ईमान की तजदीद के लिए कलमा पढ़ लें सारे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने ईमान की तजदीद का कलमा किया और अल्लाह मैं कहूं, अल्लाह ये सारा मजमा मेरे ईमान की तजदीद का गवाह है, और आप में से हर बंदा कहे, अल्लाह ये सारा मजमा मेरे ईमान की तजदीद, दिल ही दिल में, दिल ही दिल में, दिल ही दिल में, पता नहीं इसके बाद मेरी जिंदगी के कितने लम्हात बाकी हैं। मैं सोचने लगा कि सुबह बैठा था, जल्दले का झटका आया, कुछ ज्यादा आ जाता कि हजरत गए थे जल्दला वालों के पास, हजरत खुद भी जल्दले की जद में आ गए, यही कहते और क्या कहते, चार दिन रो पेट के दुआ मांग के फारिग हो जाते, वो मेरी तो मैयत ही नहीं मिलनी थी। ये कलमे की तजदीद, ये कलमे का निजाम, अभी से रमजान की तैयारियां, अभी से नेकियों की तलाश, अभी से गरीब सफेद पोश लोगों के लिए लिस्टें बनाना, अगर रब ने रिस्क दिया है। आज मुझे एक बंदा कहने लगा, मैं 2.5% निकालता हूं, पता नहीं किस मुल्क का था, जर्मनी का था, पता नहीं किस, मैंने कही 2.5% निकालता है ना, 2.5% से तू अभी से तैयारी कर कि मैंने रमजान के किन किन लोगों को राशन देना है। ऐसे बंदे सफेद पोश है सवाल नहीं कर सकते, सफेद पोश सवाल नहीं कर सकते। मैंने कहा उस 2.5% से तेरी जकात निकलती है, सदका निकलता है, खैरात निकलती है, उससे तू वो रमजान के राशन के बैग तकसीम कर, लोगों को पहुंचा। यकीन जानिए मैंने ट्रकों में पेटियां उठा उठा के ट्रकों में रखी हैं, ये तुर्किया में, ऐसा मजा आया, ऐसा सुकून मिला, और पेटियां उठा उठा के, बैग उठा उठा के एक एक खैमे तक पहुंचाने की सआदत हासिल की है। उनके आगे खैमों से झाड़ू दिए मैंने, और वो जमादार थे, उनके पास वो चुपड़ियां होती थी, वो मैंने उठा के उनकी सफाइयां की हैं। एक सुकून था, एक अंदर इत्मीनान था कि इन दुखियारे गम के मारों में अगर मेरी नीयत ठीक है, उस नीयत का मामला बड़ा कमजोर है, अगर नीयत ठीक है अमल लाजवाब है, अमल लाजवाब। ये छोटी छोटी नेकियां आज के बाद पता चला कि हमें दुनिया में भी काम आएंगी, आती हैं, आ रही हैं, और आखिरत में भी काम आएंगी, आती हैं, आ रही हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी। छोटे छोटे अमल हैं, छोटे छोटे अमल हैं, और अल्लाह की रहमत से बहुत पुर उम्मीद रहना। المؤمن بين الخوف والرجاء, मोमिन खौफ भी आखिरी दर्जे का होता है और उम्मीद भी आखिरी दर्जे की होती है। इंशाल्लाह बड़ा करीम शहनशाह है, बचते रहें, कोशिश करते रहें अपने आप को साफ पाक, अपने हलाल हराम जायज नाजायज पे नजर रखते रहें, रखते रखते उसकी रहमत से बहुत पुर उम्मीद रहें, उसकी अता से बहुत पुर उम्मीद रहें, उसकी शफकत से बहुत पुर उम्मीद रहें कि कहीं छोटी सी आह, कहीं छोटा सा झटका अल्लाह के खौफ का, अल्लाह के खौफ का। यही उस सारी उम्र खिंजीर खाने वाला बाबा, और पता नहीं उसको कलमा भी आता होगा नहीं आता होगा, क्या पता, उसने पता नहीं कभी जुमा भी पढ़ा होगा, ईद भी पढ़ी होगी, वहां तो जुमा ईद थी नहीं, जिस गांव में रहता था वह अकेला रहता था, मेरा गुमान है, मैं अपने गुमान, क्या पता वो जुमा ईद पढ़ने जाता होगा, नमाज भी पढ़ता होगा, अल्लाह अल्लाह भी करता होगा, यकीनन करता होगा, लेकिन ये मेरा अपना एक विजदान है, गलत भी हो सकता है, जरूरी नहीं। उसकी एक आह के ऊपर मुझे हकीम वहीदुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैंने ऐसे देखा ना कब्र को तहत नजर वसी देखा, तख्त पे बैठा कुरान पढ़ रहा है, और पता नहीं वो कुरान दुनिया में पढ़ा हुआ बैठा या नहीं था, ये भी एक गुमान है, तहत नजर देखा ना कुरान पढ़ रहा है, कहते ये पैसे ये पढ़े हैं मियां ये पढ़ी है, और फरमाने लगे मैंने पूछा किस अमल पे, कहा वो जो आह थी ना अल्लाह ने उस पर बख्श दिया और अल्लाह ने जन्नत वाले मन खाफा मकाम और रब भी जन्नता। छोटा सा अमल जिंदगी को कहां पहुंचा देता है, इसलिए किसी के बारे में ये काफिर है, ये मुर्तद है, ये मुशरिक है, ये जहन्नमी है, छोड़ दें ये लफ्ज, छोड़ दें ये हर्फ, छोड़ दें ये जज्बे, छोड़ दें ये नारे, छोड़ दें उस शहनशाह की बारगाह में पता नहीं कौन बेहतर है, कौन बेहतरीन है, कौन बरतर है, कौन अबतर है, कौन रहमत वाला है और कौन बख्त वाला है, पता नहीं उसके शहनशाह में, और बख्शने के कैसे उसके बहाने हैं, उस करीम के बख्शिश की कैसी इनायात और अताएं हैं, मैं आप ना पहुंच सकते हैं ना पहुंच सके हैं, इसलिए अपने जुबानों और लफ्जों में रहमत को बयान करें, लानत को बयान ना करें। काफिर मुशरिक मुर्तद बेदीन है फला है, ये लफ्ज बयान ना करें, बस उसकी रहमत को बयान करें। एक बुजुर्ग थे 40 साल अल्लाह की रहमत को बयान करते रहे, एक वह कहने लगे अल्लाह के गुस्से को बयान करूं, एक कोने में आवाज आई क्या अल्लाह की रहमत खत्म हो गई है, और ख्वाब में कहने वाले ने कहा कि अल्लाह की रहमत खत्म हो गई है, आज आपने अल्लाह के गुस्से और अजाब को बयान किया, इतने जिन्नात तड़प तड़प के मर गए कि अल्लाह की रहमत खत्म हो गई थी, आपने कहा 40 साल मैंने अल्लाह की रहमत को बयान की है, आज अल्लाह के गुस्से और अजाब को तो बयान करूं, उसकी रहमत बेकरार खजाना है, इतनी तो है जन्नती में सारे जन्नती चले जाएंगे, आखिरी जहन्नमी भी जब चला जाएगा ना जन्नती में, तो अल्लाह पाक के फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह अभी जन्नत का एक कोना भी नहीं भरा इतनी बड़ी जन्नत, जन्नत सारी खाली पड़ी है, जन्नत सारी खाली पड़ी है, तो अल्लाह पाक फिर क्या करेंगे, अल्लाह पाक ने अपनी सोसाइटी तो आबाद करनी है जन्नत की, अल्लाह एक मखलूक बनाएंगे और मखलूक को फिर जन्नत में भेजेंगे और अपनी जन्नत को भर देंगे, सारे जन सारे इंसान जन्नत में अपनी अलॉटमेंट हो, हर चीज करम नवाजी शफकत, आखिरी जहन्नमी भी जन्नत में जाके भी उसकी जन्नत का एक छोटा सा हिस्सा भरेगा, इतनी बड़ी जन्नत है, बाकी सारी खाली होगी, फिर अपनी कुदरत कामला से एक मखलूक को पैदा करेंगे, उससे वो जन्नत भरी जाएगी, उसकी रहमत पे नजर, उसकी रहमत पे नजर, उसकी शफकत पे नजर, उसकी वुस्सत पे नजर, उसकी अता पे नजर, और किसी को देखें तो कहें क्या पता इसकी बख्शिश हो जाए, इस पे करम हो जाए, इस पे इनायत हो जाए, इस पे अता हो जाए, और मैं पकड़ा जाऊं क्या खबर। आज मेरा जी चाहता है कि जिक्र खास की जगह अगर हम या तवाबो या करीमों का जिक्र करें, आय हाय, और पता है ये क्या लफ्ज है, या तवाब या करीम, पता है क्या है, जिक्र खास भी यही हो जाए, हाँ, और हमारा इस मिजाज भी यही हो जाए, पहले सुन ले ये है क्या, और आप इसको पढ़े ना आपको वो लज्जत मिलेगी, आंसू जारी होंगे। हारून रशीद के अतालीक थे याहिया बरमक्की, जाफिर बरमक्की, खालिद बरमक्की, बराम का खानदान है एक, बराम का बगदाद के रईस थे। यानी उनका एक छोटा सा मैं एक वाक्य सुनाता हूं उनकी सखावत मालदारी का। खालिद का एक दोस्त था, बड़े अरसे के बाद देखा तो क्या हाल है, उन्हें खालिद हाल ना पूछ, लुट गया सब कुछ, गुर्बत इंतहा तंग दस्ती। अच्छा कहां रह रहे हैं, कहां, बस कहीं झोपड़ी में रह रहा। खालिद ने हुक्म दिया एक महल बनाया जाए, उसके आगे एक छोटा सा मकान बनाया जाए, पीछे महल बनाया जाए। हुक्म है, महल शुरू हो गया तेज रफ्तारी से, चंद ही महीनों में तैयार छोटा सा मकान। खालिद ने बुलाया, तेरे लिए मकान बनाया छोटा सा, कबूल कर ले। इतना बड़ा मकान, दो कमरे थे, ऐसे छोटा सा मकान था, क्यों, अगर एकदम महल देखा है मर जाएगा, दिल फट जाता है ना। कई वाकयात, हमारे एक चौधरी हशमत अली साहब थे, वो कहने लगे अचानक हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ कि गल्ला मंडी शहर से निकल के फलां जगह मुंतकिल होगी, और उसमें एक बंदे का रकबा आ गया, वार से समझ रहे हैं ना। अचानक हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ कि अब रश जाता है, गल्ला मंडी शहर के वस से निकल के शहर के बाहर यहां होगी, उसकी इतने इतने एकड़ हैं, वो सारे एकड़ एक बंदे के आ गए, और उसकी कोड़ियों की जमीन एक पल में उस दौर में लाखों में हो गई। लाख लाख लफ्ज, लाख भी बड़ी बात है ना, आला हजरत ने जो लफ्ज कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लख वो मेरे भाई कहते थे ना नानी अम्मा को, नानी नाना तू चंगा के हा लख रुपए दा, लख बड़ी बात थी ना, लाखों दरूद लाखों सा, वो एकदम में कोड़ियों की जमीन लाखों में हो गई। चौधरी साहब कहने लगे मैंने उसको, मुझे खुद बताया, कहने लगे मैंने उसको देखा तो खुश था, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, सुबह जनाजे का ऐलान था। इसे कहते हैं शादी मर्ग, खुशी से मर गया, मुझे खुश कहा। चौधरी साहब कहने लगे, आके मुझे कहने लगा मेरी जमीन आ गई, और मेरी जमीन कोड़ियों की जमीन एक पल में लाखों की हो गई, और ये हो गया, मैं कहा अल्लाह खैर करे, मर गया। तो खालिद ने क्या किया, यार को बुलाया, छोटा सा मकान है, मैं यार तवाबों का फायदा बता रहा हूं, जरा गौर से सुनना, छोटा सा मकान है। उन्हें कहा बड़ा मकान है, दो कमरे छोटा सा, उसके पीछे एक महल था, आगे दीवार थी। कहने लगा ये किसका है, कहने लगा पता नहीं किसी का है, बड़ा महल है, जबरदस्त है। दो चार दिन मकान में, आठ दिन रहा, खालिद फिर गया, क्या हाल है, ठीक हो, खुशहाल हूं। उन्हें कहा बड़ा करम है, झोपड़ी में था, क्या था। तो उसने कहा महल के बारे में क्या ख्याल है, उन्हें कहा कमाल है, अगर हो जाए। उन्हें कहा भाई दीवार हटाओ, वो दीवार पहले से तरतीब बनाई हुई थी, दीवार हटाओ, ये माल भी तेरा। तो पूछा खालिद ये सब कुछ कैसे मिला, ये सब कुछ कैसे मिला। कहा मैंने अल्लाह के सामने जारी और तौबा की, और अल्लाह की करीमी को पुकारा, या तवाब या करीम, तौबा की और करीमी को पुकारा, तौबा के बदले में हमेशा उसकी नेमतों के खजाने मिलते हैं, मुझे तौबा के बदले में रिस्क के खजाने मिले हैं और खत्म होने के नहीं है। ऐसे मैंने कई महल बनाए और दे दिए, ये तो कुछ भी नहीं। ब्राह्म का खानदान था, हारून रशीद के अतालीक थे, बगदाद के रईस आजम थे, पूरी किताबें हैं उनके ऊपर, खालिद बरमक्की, यहया बरमक्की, जाफिर बरमक्की। ये खालिद की बात है, मैं तारीख के वर्क पलटा रहा हूं। उन्हें कहा मैंने उसकी करीमी उसके उसकी तौबा को मैंने सामने तौबा बस मौला या तवाब तू तौबा को पसंद करने वाला है, तू तौबा को कबूल करने वाला है, तू गुनाहों को माफ करने वाला है और माफ करने के बाद फिर तू करीम है। और करीम किसे कहते हैं? जो बिन मांगे दे, बिन लिखे दे, जुल्म जालिम आ जाए तो कहा अच्छा माफ कर चाल ले जा। मागर का बेरबिकल करीम, करीम उसे कहते हैं जो ना लिखे ना बोले ना कहे और बिन मांगे और चाहे और तेरी चाहत के मुताबिक तेरी चाहत से बढ़ के और इतना बढ़ के और इतना बढ़ के और इतना बढ़ के दे, उसको करीम कहते हैं। तो क्या ख्याल है, करीमी का कोई हाल बयान करें, उस करीम को पुकारें आज है? उस करीम को पुकारे। हाय हाय, हम आज एक लफ्ज पुकारेंगे दिल की गहराइयों से, पर दिल की गहराइयों से पुकारना, अगर दिल की गहराइयों से ना पुकारना तो चुप करके उठ जाना। लफ्ज क्या होगा? या तवाबो या करीम, या तवाबो ये लफ्ज है। डूब के मौला सारी उम्र स्याह कर दी, मेरे दिन भी स्याह, मेरी रातें भी स्याह, मेरी सुबह भी स्याह, मेरी शाम भी स्याह, सारी उम्र मैंने काली कर दी। अब तवाब तौबा को पसंद करने वाला, तौबा के मांगने वाले को माफ करने वाला, और लफ्ज या तवाबों के जरिए जब तू तौबा को पसंद करता है और माफ करता है, फिर तेरी करीमी जोश में आती है और तेरा करम मौजू पे आता है और तू झोलियां भर भर के अता करता है। मौला मैं माफी भी मांगता हूं, तौबा भी करता हूं और तेरी करीमी का सवाल भी करता हूं। हा हा, कितने खुशकिस्मत होंगे जो अभी से तलाश शुरू कर दें जरूरतमंदों की, जो सवाल नहीं कर सकते। अब अपनी खिदमत खल का राशन का बैग उनके दरवाजों पे, उनके घरों पे, उनकी चौकटों पे। मेरा मतलब सारा यही है, मैं फिर कह रहा हूं अपनी नियत के साफ होने का मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं दुकानदार हूं या ईमानदार हूं। 3000 रुपए का ये बैग क्या पता मेरी मुझे कितनी कमाइयां दे रहा, पर मुझे मैं इसका दावा नहीं करता कि मैं मुखलिस हूं, वो मौत बताएगी मुझे। पर किसी जरूरतमंद की जरूरत, महंगाई के इस तूफान में अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, वो सदका है, वो खैरात है, वो जकात है, कोई भी है, वो जरूरतमंदों को दे दे, खुशकिस्मत होगा, सादतमंद होगा। हजरत अहलुल बैत के कुछ हजरात, जिसमें हजरत इमाम जाफिर भी थे, तशरीफ ले जा रहे, तो एक जगह देखा तो एक माई के पास बकरी थी। कह लगी हम आले रसूल हैं, मदीना के हैं। कह लगी बिस्मिल्लाह, ये बकरी मेरी एक ही है, आप ये बकरी लें, इसको जबह करें। उन्होंने जबह किया, गोश पकाया, खाया, दुआ देके चले गए। कुछ अरसे के बाद देखा तो एक माई है मदीना की, मेंगनियां इकट्ठी कर रही है। पहले दौर में मेंगनियां इकट्ठी करके बेचा करते थे लोग, इसको जलाते थे, मेंगनियां इकट्ठी कर रही है। देखा तो वही माई है। लगे माई क्या हुआ? का बस हाल आ गया, आले रसूल सखावत के शहनशाह फरमाने लगे अच्छा ये 500 बकरियां मेरी तरफ से हैं। दूसरे सखी ने कहा ये 500 बकरियां मेरी तरफ से हैं और 500 दिनार भी, हत्ता के 3000 बकरियां उसको दे के जंगल में भेज दिया। 3000 बकरियां उन हस्तियों ने, आले रसूल ने 3000 बकरियां और हजारों दिरहम और दिनार इलैदा, वो एक बकरी के बदले, वो जो उसने मई ने दी थी, कि मेरी एक ही दूध देने वाली बकरी है, आप पाले पशु हैं, मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूं, आप ये जबह करें खाएं। जरूरतमंदों को तलाश करें। जो सवाल नहीं करते तलाश करें। उस दिन मैं रिक्शे वाले के पास बैठा, मैं आया वहां से दिल्ली दरवाजे से रिक्शे पे यहां आके उतरा। मैंने कितने पैसे लेंगे, उसने कहा 300 रुपया। मैंने अपने साथी से कहा, पता नहीं इसको 400 साढ़े 400 पता नहीं कितना दे दो। उसने पैसे लिए ना, उन्हें कहा 300 है। मैंने अपने बाद में अपने मैंने कहा देख, जरूरतमंद बिन मांगे दे, और जो मांगने वाला है उसको हरगिज ना दे, इसको बिन मांगे दे दे। एक अल्लाह वाले थे, तांगे वाला 4 आने मांगता था, उसको 8 आने देते थे। उस दौर में तांगे का किराया 4 आने होता था। फरमाया ये मेहनत मजदूरी करके कर रहा है, यही तांगे वाला अगर मांगने पे आ जाए, गलियों में फिर के कशकोल ले ले, इसको कशकोल से बचाओ, इसको दर दर के मांगने से बचाओ। उस सफेद पोश की जरूरत का पहले ख्याल करो। अल्लाह अकबर। तो अब हम जिक्र शुरू करें, है जी। एक तो क्वेटा की मैंने माजरत की है बहुत ज्यादा, दूसरी दफा माजरत के दर्स हुआ। कराची का की महफिल इसी एतवार 12 मार्च सुबह 10 बजे होगी इंशाल्लाह, और इसमें आजम का आइंदा दम 28 मई बरोज एतवार को होगा, याद रखिएगा 28 मई बरोज एतवार को। और रमजान के जो अशरे के पैकेज है ना, ये बहुत ताकतवर है, याद रखिएगा। पहले अशरे का क्या पैकेज है तस्बीह खाने में, दूसरे अशरे का क्या पैकेज है तस्बीह खाने में, और तीसरे अशरे का क्या पैकेज है तस्बीह खाने में, और 11 और 12 के दरमियानी रात की जो नवाफिल और 4 पैकेज हैं, इसका बेचैनी से इंतजार करें, बहुत बेचैनी से इंतजार करें। बहुत कमाल पैकेज है, बहुत जबरदस्त पैकेज है। और एक वीडियो आ रही है, चंद मिनट की वीडियो, ये 3 रमजान को अकरी के सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे अपलोड की जाएगी, तुर्किया की। उस वीडियो को फैलाना भी है और बहुत ज्यादा, और उसके ऊपर एक तस्बीह आमीन के, एक तस्बीह पढ़नी है आमीन की। अजीबोगरीब एक वीडियो आ रही है, चंद मिनट की वीडियो होगी। आहें सिसकियां दुआएं, तुर्किया में बेबस मजबूर आफात ज्यादा लोगों से दुआएं लेकर, वो तमाम दुआएं जिनकी कबूलियत में शक नहीं, ये दुआएं अर्श इलाही को हिलाकर आपके मन की हर मुराद को पूरी करके झोली में डलवाएंगे इंशाल्लाह। ना मेहनत ना बहुत बड़े चिल्ले, बस चंद मिनट की वीडियो, बरकात इनायत और खुशियों का खजाना आपकी झोली में, ये इंशाल्लाह 3 रमजान को अपनी सोशल मीडिया में। शाम का सफर है, दुआ करें, वहां भी जाके हिस्सा मिलाना चाहता हूं, आपका सफीर बन के जाना चाहता हूं शाम के सफर में। वहां भी बड़ी तबाही हुई, वो भी हमारे मुसलमान हैं, और शाम तो अरब हैं, और शाम में तो 40 अब्दालों का शहर है, मुल्क है। शाम तो अब्दाल ही अब्दाल हैं, सारे के सारे अब्दाल ही अब्दाल है। अभी तक हमारे तस्बीह खाने के पंखों के लोड मुकम्मल नहीं हुए। एक पंखे, एक तस्बीह खाने का पंखा जनरेटर पे हो, एक वापटा पे हो, इस पे अभी आप हजरात थोड़ी सी शफकत और करें, थोड़ी सी मेहनत और करें, और थोड़ी सी तवज्जो और करें, और बहुत ज्यादा मेहनत और तवज्जो करें कि हम इसका लोड इंशाल्लाह तकसीम करना चाहते हैं। आए मिल बैठ के अब अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से करते हैं। आज का जिक्र भी यही है, और अपनी रूहों को हदिया भी यही है। अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद शिफा। अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मद बिअदद कुल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मद बिअदद कुल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मद بعدد كل داء و ودوائن مبارک وسلم. اب یہ درود بھی اور یا توابو ہم اپنے لیے بھی توبہ کریں گے, امت کے لیے توبہ کریں گے. اللہ ساری امت کے لیے توبہ کرتے ہیں, عذاب کے جھٹکے اب ختم کر دے, بلاؤں کے جھٹکے اب ختم کر دے. اللہ مہنگائیوں کے جھٹکے, اللہ بیماریوں کے جھٹکے, اللہ ہم تواب یا توبہ کرتے ہیں, اللہ مصیبتوں کے جھٹکے اور ہماری نسلوں کی پیشانیوں پہ بدبختی لعنت ہے اگر اور زندگی بھر ان کے لیے بھکاری بننا ہے, اللہ اس سے توبہ کرتے ہیں. اللہ اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرتے ہیں, اللہ اپنی صبح سے توبہ کرتے ہیں, اللہ کالی شام سے توبہ کرتے ہیں. یا تواب و اس جذبے کے ساتھ اور یا کریم و اس جذبے کے ساتھ کہ بس تیرے اب تیری کرم اور تیری رحمت اور تیری عطا کو فریاد اور آواز دیتے ہیں. تیرے کرم تیری رحمت اور تیری عطا کے بغیر کوئی کام نہیں بن سکے گا. یا تواب و یا کریم و اس نیت سے اپنے لیے بھی, امت کے لیے بھی, اور جو اپنے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے بھی توبہ کہ ان کی قبریں ٹھنڈی ہوں. ہاں ان کے لیے بھی توبہ یا تواب اور ان کے لیے بھی کریمی, جنت اس کے کرم پہ ملے گی جنت. ہاں تو یا تواب یا کریم, لائٹیں بند کر پورے جذبے کے ساتھ اور پھر انشاءاللہ دعا. آج کی بیعت بھی یہی ہے, آج کا سب کچھ یہی ہے, سب کچھ یہی ہے. بس فیصلہ کریں کہ ہم نے جو ہے اس یا تواب توبہ کر کے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے, اس کی ناراضگی کو ختم کرنا ہے, اور پوری امت کے لیے توبہ, اور پوری امت کے لیے توبہ, حتیٰ کہ یہودی عیسائیوں ہندو سکھوں کے لیے توبہ, مسلمانوں کے ہر طبقے کے لیے توبہ, اور معافی اور کریمی مانگنی ہے. بس اپنے کرم فرما, اپنی کریمی کی بارش کر دے, اور جب کریم کرم کی بارش کرتا ہے نا پھر رزق اور عزت وسعت برکت کے دروازے ایسے کھولتا ہے جیسے میں نے ایک نقشہ خالد بر مکی کا بتایا ہے. ایک نقشہ میں نے بتایا ہے, ڈوب کے پورے جذبے سے, پورے ولولے سے, دل کی گہرائیوں سے پڑھیں گے. ہم کیا پڑھیں گے؟ یا تواب ہو یا کریم ہو. لائٹیں بند کر دیں. یا تواب ہو یا کریم, یا تواب ہو یا کریم, جذبے سے جذبے سے. تواب ہو یا تواب ہو یا کریم, یا تواب ہو یا کریم, یا تواب یا کریم, یا تواب یا تواب یا کریم, یا تواب یا کریم, یا تواب یا, یا تواب یا کریم, یا تواب یا کریم, یا تواب یا. دل کی گہرائیوں سے, اندر کے درد سے اس کو منائیں, اس کے سامنے گڑ گڑائیں, بھکاری بن کے, محتاج بن کے, سائل بن کے, منگتا بن کے, آنسوؤں کے ساتھ, آہوں کے ساتھ, سسکیوں کے ساتھ. یا تواب ہو یا کریم ہو, یا تواب ہو یا کریم ہو. یا تواب ہو یا تواب یا کریم ہو. یا تواب یا کریم ہو, یا تواب یا کریم. یا تواب یا,
یا تواب
یا کریم، یا تواب یا تواب یا تواب آج دل ڈوب جائیں، آج اللہ کو منا لیں، آج اس کے سامنے توبہ قبول کرا لیں، آج معافیوں کے دروازے کھل جائیں، آج پوری امت کے لیے توبہ مانگ لیں، اللہ اپنے عذاب کے جھٹکے توبہ سے ہٹا دے، آج مانگیں یا تواب یا کریم، تواب ہو یا کریم، تواب ہو یا کریم، یا تواب ہو یا کریم، یا تواب 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 و یا کریم. یا تواب و یا کریم. اللہ اس یا تواب و یا کریموں کی برکت سے رزق دے دے. اللہ یا تواب و یا کریموں کی برکت سے بیماریاں دور کر دے. اللہ یا تواب و یا کریموں کی برکت سے غصہ ٹھنڈا کر دے. اللہ یا تواب و یا کریموں کی برکت سے کلمہ نصیب کر دے. اللہ یا تواب و یا کریموں کی برکت سے فقر دور کر دے. اللہ یا تواب و یا کریموں کی برکت سے آسانیاں کر دے. اللہ یا تواب و یا کریموں کی برکت سے لٹے ہوئے اجڑوں کو آباد کر دے. اللہ یا تواب و یا کریموں کی برکت سے اگر پیشانی پہ لعنت لکھی ہے تو رحمت لکھ دے. اللہ یا تواب و یا کریموں کی برکت سے اگر ہمارے بخت برباد ہو چکے ہیں, عذاب آنے والے ہیں اور ہم خوار ہونے والے ہیں, تو ہمیں رحمتوں میں گھیر لے, ہمیں کریمی میں گھیر لے. یا کریم یا تواب 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 یا تواب یا کریم. اللہ اپنے اس نام کی برکت سے ہماری اوپر رحمتیں بھیج دے, اپنے اس نام کی برکت سے کرم بھیج دے. اللہ ہر پڑھنے والے کی جھولیاں بھر دے, ہر پڑھنے والے کو آباد ارشاد کر دے. اللہ دنیا کی جس کونے میں تیری بندی بندہ بیٹھے ہیں کسی کو محروم نہ فرما, سب کو آباد کر دے, شاد کر دے, بام مراد کر دے, دل بھر دے, جھولیاں بھر دے, بخت سے گھر بھر دے, بخت سے نسلیں بھر دے اور نسلوں کو بخت دے دے, نصیب دے دے, برکت دے دے, رحمت دے دے, عطا دے دے, شفا دے دے, راحت دے دے, کرم دے دے, ایمان دے دے, اخلاص دے دے, اخلاق دے دے. یا تواب و یا کریموں کی عطائیں دے دے, اس ناموں میں خفیہ راز دے دے, جو خفیہ برکتیں ہمیں علم نہیں وہ دے دے, اپنے ناموں کی اپنی شان کے مطابق برکتیں دے دے, اپنی شان کے مطابق برکتیں دے دے, اپنی شان کے مطابق برکتیں دے دے. اپنی رحمت کو وسیع کر دے, اپنے فضل کو وسیع کر دے, اپنے کرم کو وسیع کر دے. دنیا میں جتنے تیرے ولیوں نے یہ نام پڑا تھا تو نے ان کی جھولیاں بھری تھی, اتنا ہمیں بھی دے دے. تیرے اہل بیت صحابہ نے, اولیاء نے, ابدالوں نے یا تواب و یا کریم پڑھا تھا, اے اللہ جتنا ان کو عطا کیا اتنا دے دے, اپنے غیب سے دے دے. یا تواب و یا کریم 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 یا کریم یا تواب و یا کریم. اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے, اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے, اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے, بے گھروں کو گھر دے دے, بے دروں کو در دے دے, ٹھوکرے کھانے والوں کو سہارا دے دے, گناہگاروں کو معاف کر دے, بیماروں کو شفا دے دے, تنہائیاں پاک کر دے, علت قلت ذلت سے بچا, علت قلت ذلت سے بچا, حفاظت کفایت کفالت فرما اور مدد فرما, خاتمہ ایمان پہ کر دے اللہ, زلزلوں کے جھٹکے ختم کر دے, عذاب کے جھٹکے ختم کر دے, بلا کے جھٹکے ختم کر دے, ہمارے بادشاہوں کی حفاظت فرما, وزیروں مشیروں رعایا کی حفاظت فرما, چھاونیوں ایوانوں کی حفاظت فرما, سرحدوں بازاروں کی حفاظت فرما, اے مسلمانوں کی اللہ ہر بندے کی حفاظت فرما, کفایت فرما, کفالت فرما اور مدد فرما, یا تواب و یا کریموں کی خیر عطا فرما, یا تواب و یا کریموں کی برکتیں عطا فرما, اور یا تواب و یا کریم کی رحمت کے فیصلے ہماری جھولیوں میں ڈال دے اللہ, نقشے آنکھوں سے دکھا دے اللہ, جلوے آنکھوں سے دکھا دے اللہ, موت سے پہلے دکھا دے, بن مانگے دکھا دے, یا تواب و یا کریموں کی وجہ سے آسیں پوری کر دے, امیدیں پوری کر دے, راحتیں رحمتیں دے دے, عزتیں شان و شوکتیں دے دے, کرم عطا کے فیصلے کر دے, رحم رحمت کے فیصلے کر دے, یا تواب و یا کریم ہو, یا تواب و یا کریم ہو, یا کریم ہو, یا تواب و یا کریم, تواب و یا کریم, یا تواب و یا کریم, یا تواب و یا کریم, یا تواب و یا کریم, وصلی اللہ علی النبی الکریم, 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 وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین, آمین آمین آمین, سارے کہو آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.